आप देखिए कि सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि हम किसी भी काम के लिए ज़हनी तौर पर कितने तैयार हैं। जब हम किसी काम के लिए तैयार हो जाते हैं तो अल्लाह ताला की रहमत और उसकी तौफीक से फिर हम लोग उस काम को बेहतरीन तरीके से करते हैं। उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा शाबाश जो वक्त से पहले आए और जो शुरू के 5 मिनट में आ गए, इंशाल्लाह वो भी अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनसे बेहतरीन काम ले और इसके बाद फिर अगले लोग खुद अपने आप को मैयर करते रहे। हम सबसे ज़्यादा खुद अपने आप को जानते होते हैं, चाहे दूसरे हमें ना भी जानते हों। बहुत सारे काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि हम उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है और अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के दीन के लिए उठना, अल्लाह के कलाम के लिए उठना, ये चीज़ें मेरे आपके लिए बहुत अहम है। जितना ज़्यादा आप और मैं इस चीज़ के ऊपर रहेंगे, उतना ज़्यादा अल्लाह की रहमत से हम लोग अपने आप को फ्रेश महसूस करेंगे, सुन्नतों के मुताबिक जिएं और इसी तरह से आप अपने आप को जितना ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइफस्टाइल के करीब करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी की बरकत बढ़ती जाएगी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आपके मेरी ज़िंदगी में खैर और बरकत दे दे। बेहतरीन तरीके से अल्लाह से मांगा करें, अल्लाह से थोड़ा ना मांगा करें, उसके पास बहुत सारा है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, ये है वो है, हम कैसे करें क्या ना करें, तो उसका जवाब यही है कि जब वो दे सकता है ज़्यादा तो फिर हम ज़्यादा ले क्यों ना। तो बस यही चीज़ है, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। शुरू करेंगे पूरे यकीन और इस दुआ के साथ कि हम लोग ये काम अल्लाह की मदद और उसकी तौफीक के बग़ैर कर ही नहीं सकते, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तो हमारे टारगेट को पूरा करवा। और सबसे बड़ी बात है कि जो बात भी हम सुने और सुनाएं उसमें हमें फ़ायदा भी दे और हमारे अमल में इसको ढाल दे। और फिर इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप देखेंगे कि जब अल्लाह से मांगा जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला किसी को भी महरूम नहीं करता। वलम अकुम भी दुआ का रब्बी शकिया कह लीजिए, बस वही दुआ है आपके मेरे लिए, अल्लाह ताला आसान फरमाए। शुरू करते हैं आज का टारगेट, अल्लाह ताला पूरा करवाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बादु, फाउजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अल्लाह ताला की तौफीक से दौरे कुरान 2020, इसमें हम 9वें पारे को कंटिन्यू करेंगे आयत नंबर 175 से। हम देख रहे हैं कि इंसान कैसे सीधा चलता चलता हिदायत के रास्ते से उतर कर गुमराही के रास्ते पे आ जाता है और अमूमन उसको पता भी नहीं चलता। ऐसा ही एक किरदार जिसको हिदायत के रास्ते से उतरते हुए पता भी न चला कि क्या उसका हाल हो गया। और यहाँ इल्म का फितना नोट कीजिएगा, बस अब हम थोड़ा सा इल्म लेने के बाद ये सोचने लग जाते हैं कि बस हमें तो सब पता और ये है, और हम जैसा कौन और वो कैसा, और हम किसके पीछे और कौन हमारे पीछे। ऐसा नहीं है। याद रखिए कि इल्म वाले तो और भी ज़्यादा भटकते हैं। किसी ने कहा कि आलिम का शैतान भी आलिम ही होता है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें इल्म दे तो इल्म नाफ़े दे और खशियत वाला इल्म दे, ना कि तकब्बुर और रौनत वाला दे। तो एक वाक्या है, आप अभी सुनेंगे तो तर्जमे से ही आपको इसका अंदाज़ा होने लगेगा कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसको इल्म दिया, और वो इल्म के बाद अगर उसी पे जमा रहता और उसके तकाजे पूरे करता तो एक वक्त आता कि उसकी ज़िंदगी में भी खैर होती। लेकिन बाज़ दफ़ा इंसान जल्दबाजी करता है, थोड़े इल्म के साथ ज़्यादा इल्म वालों के साथ अपना तकाबुल करता है, और कभी कभी उस इल्म को माल कमाने की एक वजह भी समझने लगता है। तो ऐसे ही किसी शख्स का वाक्या है जिसको मैं और आप इस शऊर के साथ भी पढ़ेंगे और इस चीज़ का ख्याल रखते भी पढ़ेंगे कि ऐ मालिक, हम में से किसी को भी इस तरह के इंजाम से दोचार ना कर। मेरा नहीं ख्याल कि कुरान पाक में इससे ज़्यादा कोई मिसाल बुरी मिली हो किसी को, कि जब इल्म मिला अल्लाह उसको इज्जत दे सकते थे लेकिन अपनी थोड़ दिली की वजह से, कच्चेपन की वजह से और इसी तरह की चंद नेगेटिव चीज़ों की वजह से वो सबीलुल रुश्द से उतर कर सबीलुल गई पे चढ़ गया और उसको पता भी ना चला। आइए देखते हैं 175 से। वतलु अलैहिम नबअ अल्लज़ी आतैनाहु आयातिना, और इन लोगों को इस शख्स का हाल पढ़कर सुनाइए कि जिसको हमने अपनी आयतें दी फिर वो इनसे बिल्कुल ही निकल गया, फिर शैतान इसके पीछे लग गया, सो वो गुमराह लोगों में शामिल हो गया। और अगर हम चाहते तो इसको इन आयतों की बदौलत बुलंद मर्तबा कर देते, लेकिन वो तो दुनिया ही की तरफ माइल हो गया। नोट कर लीजिए क्या इसबाब बनते हैं रुश से गई के रास्ते पे आने के, और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी करने लगा। सो इसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि अगर तू इस पर हमला करे तब भी वो हांफे, या इसको अगर छोड़ दे तब भी वो हांफे। यही हालत इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। बस आप इस हाल को बयान कर दीजिए, शायद वो लोग कुछ सोचें। आप देखिए कि कितनी खतरनाक बात है। तो फितना इल्म में मुबतला शख्स का हाल कैसे होता है, इन आयात में उसकी मंजरकशी हमारे सामने आ गई कि कैसे वो शख्स जिसको अल्लाह ताला उस इल्म से इज्जत दे सकता था, और हकीकत है कि इल्म अपने साहेब को इज्जत देता है, यह हदीस से भी मिलता है, लेकिन बात यह है कि इंसान बाज़ दफ़ा मालूमात को और चीज़ों को जान लेने को ही इल्म समझ लेता है, हालांकि इल्म खशियत का नाम है। और मैं अपने आप को पहले सुनाऊँ फिर किसी और से कहूँ, जब तक आप में खशियत ना आए कभी किसी को ना देने बैठे। बेसाब्ता तौर पे तो हम हर वक्त ही किसी ना किसी को दे ले रहे होते हैं, लेकिन अगर आप बाज़ाब्ता तौर पे किसी को देना चाहते हैं तो पहले इल्म का ये बाब भी पढ़ लीजिए। और वो बाब क्या है कि क्या आपके अंदर खशियत आई है। बस जब हम किसी से सुनते हैं उसके लफ्ज़ हमारे कानों में आते हैं, हम कहते हैं बहुत अच्छी बात है और ये तो बड़ा नया मौजू है, चले मैं भी आगे बताती हूँ। बताइए, कोई बुरी बात नहीं है, बल्लिगनी वलो आया, लेकिन साथ साथ खुद को भी बताइए। बस जब इंसान दूसरों को बताते बताते खुद को भूल जाता है तो उल्टी तरतीब हो गई ना, हु अनफुसकुम की बजाय वाहलीकुम पहले हुआ, तो फिर तभी तो लोग हमें खरी खरी सुनाते हैं। तो ऐसा शख्स जो फितना इल्म में मुबतला होता है उसकी ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं कि उसकी राल टपकती रहती है। वो इल्म जिससे वो दुनिया और आखरत दोनों बना सकता था उसको सिर्फ दुनिया बनाई। अब इसकी बहुत सी मिसालें हो सकती हैं। मिसाल है कि आप इल्म की दौलत को पाकर तकब्बुर का शिकार हो गए, यही मिसाल थी समझ लीजिए कि इब्लीस की। फिर इसी तरह से उसको माल कमाने का जरिया बना लिया, हक छुपाने का जरिया बना लिया, और इसी तरह से उसके तकाजे पूरे ना किए और खुद लेने की बजाय दूसरों को देने का शौक इतना आ गया कि फिर लेना छोड़ दिया इसलिए कि देना पड़ेगा, और उसका नतीजा क्या निकला, कच्चा पक्का इल्म आगे गया। तो ये सारी चीज़ें उस ज़िंदगी में आती हैं और फिर इंसान को पछतावे लगते हैं। एक वक्त आता है दिल करता है कभी पीछे पलट कर जाए और अपनी तालिब इल्मी की ज़िंदगी में खुद को अपने आप को खड़ा करें और एक एक रूल पे अमल करें, हर सबक को समझें, होमवर्क भी करें, तर्जुमा भी लिखे, क्योंकि जिन्होंने खुद मेहनत करनी सीखी होती है फिर वो दूसरों से भी करवा लेते हैं। और मैंने देखा है जो सीखने में ढीले होते हैं ना वो कभी भी बाद में अच्छी मैनेजमेंट कर नहीं पाते। फिर इसी तरह आखिरत में जो असरात होंगे वो तो बहुत ही बुरे होंगे। तो आइए देखते हैं कि माल और नफसानी ख्वाहिशात में मुबतला दुनिया परस्त इंसान का लालच उसे कहाँ तक ले जाता है। क्योंकि आप देखिए ये दो ही चीज़ें हैं ना जिसकी वजह से एक इंसान इधर से उधर होता है। तसव्वुर में लाइए कि एक इंसान रोड पे जा रहा है और रोड पे गाड़ी जानी सीधी थी लेकिन उसको पता भी नहीं चला और वो कहीं लेफ्ट या राइट मुड़ गई। तो हरीस लालची इंसान को हर वक्त माल में इजाफे की फिक्र रहती है। पॉइंट्स में लिखिएगा, बाद में याद रखेंगे कि कितने पॉइंट्स थे और उसमें से मैंने किस किस पे अमल करना है। इसी तरह कुलूब का फसाद होता है, दिल में फसाद आने लगता है, मसलन तकब्बुर, रियाकारी और दीगर अखलाकी बीमारियां और फितने पैदा होते हैं। यानी जैसे आप देखिए कि अगर आपको जुकाम हो ना तो उसके साथ कभी कभी बुखार भी हो जाता है। इसी तरह बाज़ दफ़ा इंसान के अंदर कुछ ऐसी तकलीफें और बीमारियां आ जाती हैं कि जिसकी वजह से इंसान फिर बाज़ दफ़ा किसी और बीमारी का भी शिकार होता है। इधर भी यही हो रहा है, हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद में गफलत बरतने लगता है इंसान, और इसी तरह गुनाहों का मिलान ज्यादा और आखरत और जिक्र इलाही से गफलत आने लगती है। इंसान फिर अपना भी नहीं रहता और नफ्स पर जुल्म करता है। वो कहते हैं ना कि तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, और सूरत हशर में तो हम इसको फिर पढ़ेंगे कि जब वो हमें भूले तो हमने उनको उनकी जानें ही भुलवा दी। इसी तरह मरते वक्त दुनियादार इंसान पछताता है कि क्या साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं, तकब्बुर तो बहुत था कि देखना मेरे साथ बहुत कुछ जाने वाला है लेकिन है ही कुछ नहीं उस वक़्त। फिर इसी तरह दीन सीखने सिखाने और फैलाने का वक्त नहीं मिलता, क्यों? आप देखिए ना, अल्लाह ने आपको दीन दिया, मसे इस वक्त आप जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो अपने ऊपर लें। सच बताइए कि सबीलुल जन्ना कोर्स क्या आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं है? क्या आप इसी के ज़रिए दुनिया भी अच्छी बनाएं और आखिरत भी अच्छी बने? अब आप पढ़ते हैं, फिर आप उसके बाद नूरुल अनूर पे आते हैं, फिर इल्म नाफिया पे आते हैं। अब इतना कुछ कर करा के तो आप घर बैठ जाए, छुट्टी कर ले, या आप कह लीजिए कि जॉब करनी शुरू कर दें, किसी काउंटर पे खड़े होकर 10 पाउंड की पे ले लीजिए। ये नुकसान है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना है। तो बस दफ़ा फिर जब दुनिया और नफ्स बीच में आता है तो इल्म वाले भी इल्म की दौलत की कदर नहीं करते। फिर आखरत में हिसाब लंबा होगा, क्योंकि दुनिया जो जमा हो गई और माल जमा करके गिनने वालों के लिए वेल है। और अल्लाह ने तो सच कह दिया कि अल्हाकुमुत्तकासुर, हत्ता ज़ुर्रतुमुल मकाबिर, माल जमा करने की हवस दुनिया में गाफिल करके बिल आखिर कब्र तक पहुंचा देती है। तो हमेशा अल्लाह ताला से इस बात की दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इल्म नाफे दे, ऐसा इल्म दे कि जिसके बाद हम अपनी भी आखिरत संवारें और दूसरों की भी। और इसको अल्लाह ताला ने क्या कहा, बुरी मिसाल कहा, सा मसलनिल कौमिल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व अनफुसहुम कानू यज़लिमून। और इन लोगों की हालत भी बुरी हालत है जो हमारी आयात को झुटलाते हैं और अपना नुकसान करते हैं। जिसको अल्लाह हिदायत करता है पस वही हिदायत पाने वाला होता है, और जिसे वो गुमराह करते हैं सो ऐसे ही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। अब आप कहेंगे अच्छा जी फिर अल्लाह ही नहीं चाहता, तो याद रखिए कि अल्लाह चाहता है, जब तक आप नहीं चाहेंगे बात नहीं बनेगी। अगले पारे में इंशाल्लाह ईमान बिल आखिरा पे थोड़ी सी बात करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और हमने ऐसे बहुत से जिन और इंसान दोजख के लिए पैदा किए हैं, जिनके दिल ऐसे हैं जिनसे नहीं समझते, और जिनकी आंखें ऐसी हैं जिनसे नहीं देखते, और जिनके कान ऐसे हैं जिनसे नहीं सुनते। ये लोग चौपायों की तरह हैं, बल्कि ये इनसे भी ज़्यादा गुमराह यही लोग गाफिल हैं। ज़रा सा सोचिए, बोलिए अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, ए मालिक मुझे इन लोगों में न शामिल करना, इसलिए कि ये वो लोग हैं कि जिनको अपनी भी नहीं पता। आप देखिए ज़ाहिर इस आयत को समझें बगैर आगे गुजर जाएं तो कभी कभी लगता है लो अल्लाह ने जब पैदा ही उनको आग के लिए किया है, जहन्नुम के लिए किया है, तो फिर वो बेचारे क्या करें। वो बेचारे नहीं हैं, अल्लाह को अपने इल्म अज़ली से पता था कि ये जाकर ऐसे काम करेंगे कि इनका नतीजा और इनका अंजाम जहन्नुम ही होगी। जो गुनाह किया इन्होंने अपने शऊर से किया, अपने इरादे से किया, करने से पहले थोड़ी किसी ने कहा था कि जल्दी जल्दी गुनाह करो ताकि अल्लाह का लिखा हुआ सच हो जाए। तो अकीदा है तकदीर को पढ़ना समझना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग तो अल्लाह ताला से भी नाराज़ हो जाते हैं बाज़ दफ़ा अधूरी बात को समझ कर, और अल्लाह ताला के मामले में भी बाज़ दफ़ा लोगों का हाल क्या होता है कि अल्लाह ताला के नामों जैसे नाम दूसरों के साथ रखने लग जाते हैं और अल्लाह ताला का नाम भी बिगाड़ने लगते हैं। तो फरमाया वलिल्लाहिल्लस्माउल हुस्ना, और अच्छे-अच्छे नाम अल्लाह ही के लिए हैं, सो इन्हीं नामों से अल्लाह को मासूम किया करो, और ऐसे लोगों से ताल्लुक भी ना रखो जो इसके नामों में कजरवी करते हैं। इन लोगों को इनके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। देखिए अल्लाह ताला के नाम कौन बिगाड़ता है, तो नोट कीजिए, अपने मज़हब और अपने अकीदे के मुताबिक तो कोई कुछ भी कह दे उस पे तो कोई गुनाह नहीं, कोई अबार नहीं, क्योंकि वो जाने उनका मामला। लेकिन जब मुसलमान भी अपने बातों में और दोस्तियों में और फिल्मों को देखते देखते अल्लाह ताला को राम कहने लग जाएं, भगवान कहने लग जाएं, निर्वाण कहने लग जाएं, तो आज से तौबा कर लीजिए, ये लफ्ज़ अल्लाह के लिए बोलना हराम है। वो ऊपर वाला कहते हैं तो मैंने बास लोगों को देखे बेतकल्फी में दोस्तों के साथ वैसी बातें करती हैं, अगर वो बहनोई को जीजा जी कहते हैं तो ये भी जीजा जी कहेंगी, और दीदी है तो वो भी दीदी है। आज से तौबा कीजिए, और ख़ास तौर पर अल्लाह ताला के लिए जब ऐसी बात की जाए तो इससे अपने आप को पीछे कर देना है। और हमारी मखलूक में एक जमात ऐसी भी है जो हक के मवाफिक हिदायत करती है और इसके मवाफिक इंसाफ भी करती है, और जो लोग हमारी आयात को झुटलाते हैं हम इनको बतदरीज यानी स्लोली ग्रेजुअली गिरफ्त में लिए जा रहे हैं, इस तौर पर कि इन्हें खबर भी नहीं। आपने नोट किया इस सूरत में झुटलाने का बहुत तज़किरा, एक तरफ झुटलाना है और दूसरी तरफ पकड़ भी है। क्या पता चला कि जो इंसान जानते या नहीं जानते हुए अल्लाह ताला के हुक्मों को उसकी बातों को झुटलाता है, अल्लाह ताला फिर उसको गैर महसूस तरीके से पकड़ता है। कभी कभी ये पकड़ बीमारियों की सूरत में आती है, कभी औलादों के नाफरमान होने की सूरत भी होती है, और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की तकलीफें। और फिर फरमाया मैं इनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या इन लोगों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि इनके साथी को जरा भी जुनून नहीं, वो तो सिर्फ एक साफ साफ डराने वाले हैं। लिख लीजिए इस जुमले को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फुल डेडिकेशन के साथ और एक जोश और जज्बे के साथ अल्लाह के रास्ते में भागते दौड़ते देखते तो आपके साथी कुछ इसी किस्म की बातें करते, ये जुनूनी हो गया। और कभी कहते कि इनके ऊपर हमारे बुतों की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि जुनून पे आ गए, और अल्लाह के नबी ने कितने इल्ज़ाम सहे। आज भी तो लोग जब किसी को मिशनरी जील के साथ दीन का काम करता देखें, सुबह भी करें शाम को भी, तो कहते नहीं अब इतना भी तो नहीं करना, फिर घर भी है और बच्चे भी हैं, तो जवाब दीजिए कि इन्हीं घरों और इन्हीं बच्चों के लिए तो करना है। तो बातें तो सुननी पड़ेंगी, हमारे नबी ने बातें सुनकर काम नहीं छोड़ा तो आपके मेरे पास क्या बात है। और कई लोगों ने गौर नहीं किया आसमानों और ज़मीन के आलम में और दूसरी चीज़ों में जो अल्लाह ने पैदा की हैं, और इस बात में कि मुमकिन है कि इनकी अजल करीब ही आ पहुंची हो, फिर कुरान के बाद कौन सी बात पर ये ईमान लाएंगे। ज़रा सा 3 सेकंड सोचिए, आपके मेरे हाथ में इस वक्त अल्लाह की बेहतरीन किताब है, इंसानियत को हिदायत देने वाली, पूरे प्रोटोकॉल और अहतमाम से नाजिल की भी किताब। जिस शहर में आई उसको बाबरकत बना दिया, जिसने इस किताब को पकड़ा उसको अल्लाह ने इज्जतें दे दी। क्या आप मैं अब इसके बाद भी किसी और किताब के मंतजर हैं? अगर इसको पढ़ के अमल नहीं करना, इसको सुन के अमल नहीं करना, इसके हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी बसर नहीं करनी, तो सवाल है कि इसके बाद क्या? ये तो बिल्कुल ऐसे है कि कोई PhD कर ले और उसके बाद जो कोई तालीम मुमकिन थी हो गई, तो अब उसके बाद क्या करेगा? कोई कह सकता है कि अगर इसको ये करके समझ ना आई तो फिर कब आएगी? तो दुआ कीजिए अपने लिए, तड़प के देखिए, रमज़ान के ये दिन भागते हुए गुजर रहे हैं। ऐसे हाथ लगाएं जैसे कहें कि आपके आगे एक ट्रेन चल रही है। अल्लाह से खैर मांग लीजिए, अल्लाह ताला से दुआ मांग लीजिए कि मालिक मुझे इस किताब से फ़ायदा लेने वाला बना दे। मैं समंदर के पास से प्यासे होंठ लेके आने वाले बदबख्त शख्स की तरह ना हो जाऊं कि सब कुछ पढ़ पढ़ा के फिर इसके अंदर से अपने आप को पीछे कर दूं। और बात यही है, जिसको अल्लाह ताला गुमराह कर दे इसको कोई राह पर नहीं ला सकता, और अल्लाह ताला इनको इनकी गुमराही में भटकते हुए छोड़ देता है। क्या पता चला कि जब इंसान को तलब नहीं होती किसी चीज़ की, तो फिर अल्लाह ताला को भी उसकी परवाह नहीं होती। ये लोग आपसे कयामत के मुतालिक सवाल करते हैं कि इसका वकूअ कब होगा? आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है, इसके वक्त पर इसको सिवाय अल्लाह ताला के कोई जाहिर ना करेगा। वो आसमान और ज़मीन में बहुत भारी हादसा होगा, वो तुम पर महज अचानक आ पड़ेगी। देखिए चीज़ भी बड़ी और हो भी अचानक, कभी अल्लाह ना करे हादसे से दो चार हुए हैं तो उस वक्त को याद कीजिए, सेकंड्स में गाड़ी उलट जाती है और इंसान को पता ही नहीं चलता कि हुआ क्या। और बहुत तेज़ चलती गाड़ी जब रुकती है तो एक चरचराहट की आवाज़ आती है ना, तो आज सूरज चांद सितारे बड़ी तेज़ी से घूम रहे हैं। जब एकदम अल्लाह ताला कुन फरमा कर इनको रोकेंगे तो वही हैं क़यामत की आवाज़ें, और वो सारा वक्त जो आएगा उस वक्त किसी को होश ना होगी। वो आपसे इस तरह पूछते हैं जैसे गोया आप इसकी तहकीक कर चुके। आप फरमा दीजिए कि इसका इल्म खास अल्लाह ही के पास है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। यानी सवाल पूछने के बजाय बेहतर नहीं अमल कर लो? अल्लाह के नबी से भी किसी ने आके पूछा था यही सवाल, तो आपने कहा था ये बता कि तूने उसके लिए तैयारी क्या की है। एक तालिब इल्म यही पूछता रहे कि इम्तिहान कब है, पेपर कब होंगे, कब क्या कुछ, इसी तरह की बातें करता रहे, तो आप बताइए कि उससे बेहतर नहीं है कि इंसान पढ़ ले और उससे फ़ायदा उठा ले? आप फरमा दीजिए कि मैं खुद अपनी ज़ात खास के लिए किसी नफ़े का इख्तियार नहीं रखता और न ही किसी ज़रर का। इसको भी ज़रा सा गौर से देख लीजिए, आज के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कहते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बारे में क्या कहते हैं। कुरान पाक को ना पढ़ने या समझे बगैर पढ़ने की यही सज़ा होती है कि वो कुरान और हदीस की सीधी सीधी बातें जो बग़ैर किसी उस्ताद की मदद के भी समझ आ जाएं, इंसान को वो भी समझ नहीं आती। मगर इतना ही जितना कि अल्लाह ने चाहा हो, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत मुनाफे हासिल कर लेता और कोई नुकसान मुझे ना पहुंचता। मैं तो महज डराने वाला और बशारत देने वाला हूँ इन लोगों को जो ईमान रखते हैं। तो अल्लाह के नबी को अपना मुकाम बहुत अच्छी तरह पता था। अब यहाँ एक और मिसाल आने वाली है, शौहर और बीवी और उनका बच्चा अच्छे खासे अल्लाह ताला के रास्ते पे चल रहे थे, औलाद की तलब तो अल्लाह से की, लेकिन जब बच्चा पैदा हो गया तो उसके साथ क्या हुआ? आइए देखिएगा, यानी ये एक और मिसाल है रुश्त के रास्ते से उतरकर गई के रास्ते पे जाने की। वो अल्लाह ताला ऐसा है जिसने तुमको एक तने वाहिद से पैदा किया और इसी से इसका जोड़ा बनाया ताकि वो अपने जोड़े से उन्स हासिल कर सके। फिर जब बीवी से कुर्बत हासिल की तो इसको हमल रह गया, सो वो इसको लिए हुए फिर चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों मियाँ बीवी अल्लाह से, जो इनका मालिक है, दुआ करने लगे कि अगर तुमने हमको सही सलामत औलाद दे दी तो हम खूब शुक्र गुजारी करेंगे। इन दिनों में हो सकता है हर कपल यही कहता हो। सो जब अल्लाह ताला ने दोनों को सही सलामत औलाद दे दी तो अल्लाह की दी हुई चीज़ में वो दोनों अल्लाह के शरीक करार देने लगे। सो अल्लाह पाक है इनके शिर्क से। क्या पता चला कि जब औलाद होती है तो उसको कभी पीरां दित्ता और कभी बाबा जी का फलां और कभी किसका गुलाम कहते हैं, किसी को गुलाम फलां फलां। आज के दौर में हो सकता है कि हम में से कोई भी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद तो यही है कि किसी कब्र पे जाकर औलाद नहीं मांगेगा, हम में से कोई अपने बच्चे का नाम पीरां दित्ता और फलां दित्ता नहीं करेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि आज औलाद के साथ शिर्क कैसे किया जाता है? नंबर एक ये कि उनकी अच्छी तरबियत नहीं की जाती, और दूसरी बात यह है कि औलाद को वो मकसद हयात नहीं दिया जाता, उनको अल्लाह कॉन्शियस नहीं बनाया जाता। फिर आप देखिए कि इस आयत में बीवी के लिए बहुत ही खूबसूरत कमेंट्स हैं, जिसको आप कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लियस्कुना इलैहा। बिल्कुल यही अंदाज सूरत रोम में भी हम पढ़ेंगे कि बीवी जो है वो मर्द के लिए सुकून देने वाली चीज़ है, ऑनर दी जा रही है। बीवी को सुकून बख्श चीज़ क्यों कहा? क्योंकि बीवी अगर मर्द की मिजाज शनास हो जाए, दुख में तकलीफ़ों में उसको तसल्लियाँ दे, जैसे बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देती थी, तो वो वाकई सुकून का ज़रिया बनती है। अल्लाह ने बीवी के पास सुकून जैसी कीमती चीज़ रख दी। अगर इस चीज़ को आज समझ जाएँ तो हमें अपने शोहरों को हैंडल करना आ जाए। अपनी बेटियों के लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाह उनको अपने शोहरों का मिजाज शनास बना दे। आप देखिए कि ज़रा सा सब्र करके इंसान अगर कुछ अरसा साथ गुजार लेना तो एक दूसरे का मिजाज समझने लगता है। बीवी को पहले से पता चल जाए कि शौहर को इस बात पे गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आने लगे तो उसको सुकून दे। शौहर परेशान है तो उसको सुकून दे, मशवरा मांगे तो पुरसकून कर दे। मददगार होती है बीवी, असल में दी बेस्ट फ्रेंड होती है शादी के बाद एक मर्द की। अब दोस्तियाँ पहले लग जाएं तो बाद में फिर वो बेतकल्फियाँ बाकी ना रहें तो फिर घर बिगड़ते हैं। एक वक्त आता है कि आप उनके उठने से, बैठने, घर में आने से उनका चेहरा देख के पहचान जाते हैं कि ये पीछे से किधर से आए। घर में जूता उतारने से, अपना बैग उतारने से, चाबी रखने से समझ आती है कि आज शौहर परेशान है, आज खुश हैं, आज इनका मूड कैसा है। बस अब मर्द अपने किसी काम में मसरूफ होते हैं, आप बिला वजह उनको परेशान करते हैं, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, तो झगड़े तो होंगे। तो आज घरों के झगड़ों की बहुत बड़ी वजह ये है कि बेटियों के अंदर ये सेंस नहीं डेवलप की जाती, और बराबरी के नाम ने वैसे ही इस बात पे रख दिया कि हम उनको क्यों करें, वो क्यों ना करें। तो लिहाजा 175 से 190 तक मौजू हमने देखे। पहली बात देखी कि ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करनी और उनका अंजाम क्या होता है। फिर गाफिल इंसान जानवर से भी बदतर है। अल्लाह ताला को इसके अच्छे अच्छे नामों के साथ ही पुकारना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतराफ़ उनकी आजजी और बेबसी, और इसी तरह से इंसानों की नाशुक्री। अब ऐसी सारी बातें जब एक इंसान सुनता है तो उसको वाकई महसूस होने लगता है कि मुझे अपनी इसलाह करनी है, और फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान को शिर्क का फ़र्क पता हो कि हकीकत क्या है और दूसरी चीज़ क्या है। इसलिए आयत 191 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयुश्रिकू नमा ला यखलुकू शैयम व हुम युखलकून। क्या ऐसों को शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज़ को पैदा ना कर सकें, वो खुद ही पैदा किए जाए हों? यानी क्या वाकई मखलूक को पुकारते हैं? आप देखिए कि लोग कितने ना समझ है ना, वो लोग जो कब्रों में जा चुके, जो अपने अंजाम को पहुंच चुके, अब ये वहां जा रहे हैं। गोया कि आप कह लीजिए कि कब्रों में लेटे हुओं को क्यों तंग करते हो, इन पर मनोटनों फूल क्यों चढ़ाते हो, इन पर चादरें क्यों चढ़ाते हो? और फिर आप याद रखिए कि जो माल लगता है उस पर उसकी तो बात आगे आ रही है। फरमाया, और वो इनको किसी किस्म की मदद नहीं दे सकते, वो खुद भी मदद नहीं कर सकते। और अगर तुम इनको कोई बात बतलाने को पुकारो तो तुम्हारे कहने पर न चले, तुम्हारे एतबार से दोनों अमर बराबर हैं, ख्वाह तुम इनको पुकारो या खामोश रहो। वाकई तुम अल्लाह को छोड़कर जिनकी इबादत करते हो वो भी तुम जैसे ही बंदे हैं। नोट कीजिए, ये उन अच्छे बुजुर्गों के बारे में जिन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा लोगों को तौहीद का दर्स दिया, लेकिन लोगों ने उन जैसा बनना तो मुश्किल समझा कि हम क्यों इतनी पाबंदियां लगाएं, चलें फिर इनका ही पल्लू पकड़ते हैं। तो फरमाया, फिर इनको चाहिए कि तुम्हारा कहना पूरा कर दें अगर तुम सच्चे हो। क्या इनके पाँव हैं जिनसे वो चलते हों? यानी अगर बुत के लिए कह रहे हैं तो वो बुत के पाँव तो चलने वाले नहीं होते, और अगर फौतशुदा बुजुर्गान के लिए कहा जा रहा है तो जाहिर है कि अब वो पाँव बेहिस हो चुके। या इनके हाथ हैं जिनसे वो किसी चीज़ को थाम सकें, या इनकी आंखें हैं जिनसे वो देखते हों, या इनके कान हैं जिनसे सुनते हों। आप कह दीजिए, तुम अपने सब शुरका को बुला लो, फिर मेरी ज़रा रसानी की तदबीर करो, फिर मुझको ज़रा मोहलत मत दो। यकीनन मेरा मददगार अल्लाह ताला है जिसने ये किताब नाजिल फरमाई, और वो नेक बंदों की मदद करता है। क्या पता चला, हर दौर में लोगों ने ऐसी ही बातें घड़ी। और इससे ये भी पता चल जाता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके बाप दादा के तौर तरीकों पे बात करते तो आगे से रिएक्शन उठता था। और तुम जिन लोगों की अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो वो तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकते, और ना वो अपनी मदद कर सकते हैं। इनको अगर कोई बात बतलाने को पुकारो तो इसको ना सुने, और इनको आप देखते हैं गोया वो आपको देख रहे हैं, और वो कुछ भी नहीं देखते। अक्सर मूर्तियां जो होती हैं ना, वो 3D होती हैं, जिधर आप देखेंगे आपको उधर से ही लगेगा वो देख रही हैं, लेकिन वो तो एक मास्टरपीस है, बस आर्ट का है, असल में तो उनको दिखता नहीं है। तो लिहाजा ऐसे लोग जो इन चीज़ों में पड़ चुके हैं, अब आप इनको क्या करें? आप दरगुजर इख्तियार करें, नेक काम की तालीम दें और जाहिलों से किनारा हो जाएं। यानी आपने रिएक्शनरी नहीं बनना। और जाहिर है कि गुस्सा तो आता है इंसान को। आप देखिए ना कि एक शख्स किसी कब्र पे जाता है और वहां जाके एक भारी चादर खरीदी और वो डाल दी, कितने की आती होगी? आज भी शायद 500 की तो होगी ना। फिर आप देखिए कि वे उसके ऊपर फूलों की चादरें हैं, कितने के होंगे? 1,000 के तो होंगे। सच बताइए कि अब मज़ारों को डोनेशन की ज़रूरत है और उस पर चंदे बॉक्स रखे होंगे। आपके तो पूरे मुल्कों में ये ऐसे ऐसे इदारे कायम हैं कि जो महकमा औकाफ के नाम पर इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा असिस्ट करते हैं। अब आप बताइए कि मज़ारों को पैसे की ज़रूरत है आपके मेरे, या मदरसों को? गरीबों को ज़रूरत है कि यतीमों को, कि बेवाओं को? और हमारे इर्द गिर्द शिर्क फैला हुआ है। एक बार अपनी मासियों को, अपने ड्राइवरों को और अपने मालियों को लेकर बैठिए। अगर आप बाहर रहते हैं तो जब भी कभी अपने अपने होमलैंड गए तो इसको अपने साथ रखिए। बैठकर प्यार से, मोहब्बत से, बिल्कुल कच्ची पक्की के स्टाइल में उनको शिर्क क्या होता है और उसको बताइए। सूरह फातिहा का तर्जुमा, नमाज का तर्जुमा। इसी तरह आप देखिए कि हमारे रिश्तेदारों में बाज़ लोग शिर्क करते हैं। एक दफ़ा तो कम अज़ कम हुज्जत तमाम कीजिए, खुल के बता दीजिए। हम छुपते रहते हैं, ढकते छुपते रहते हैं, नहीं माइंड करेंगे, नहीं, जिसने करना है वो कर लेगा। हक बात कभी नहीं छुपती और ज़रूरत है इस बात की के खैर आ जाए। और आप देखिए कि जो ही आप हक पहचानते हैं, दूसरों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वहीं मुखालफतें शुरू होती हैं। तो फरमाया, ऐसे वक्त में क्या करो? फस्तईस बिल्ला, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, क्योंकि लोग आपको नहीं जीने देंगे। क्योंकि अंदर गुदगुदी तो होती है ना। देखिए ना, इंसल्ट तो कोई भी नहीं बर्दाश्त करता। आप जितने मर्जी ठंडे मिजाज के हों, जरा आपके खिलाफ कोई गलत बात करे तो गुस्सा तो आता है। तो फरमाया कि फिर आप ऐसे वक्त पे रब से मदद मांगिए। इन्नहू समीउन अलीम। जबकि मोमिनों का हाल क्या है? इन्नल्लज़ीना तक़ू इज़ा मस्सहुम तायफ़ुम मिनश शैतान। यकीनन जो लोग अल्लाह से डरने वाले हैं, इनको कोई ख़तरा जब शैतान की तरफ से आ जाता है तो वो याद में लग जाते हैं। सो यकायक इनकी आंखें खुल जाती हैं। और जो शयातीन के ताबे हैं, वो इनको गुमराही में खींच लिए जाते हैं, बस वो बाज नहीं आते। कहाँ तक? नोट करिएगा। जब तक वो लोग सबीलुर रुश्द से सबीलुल गई पे ना जाएं। और जब आप कोई मौजज़ा इनके सामने जाहिर नहीं करते तो वो लोग कहते हैं कि आप ये मौजज़ा क्यों नहीं लाए? आप कह दीजिए, मैं इसकी पैरवी करता हूँ जो मुझ पर मेरे रब की तरफ से हुक्म भेजा गया है। ये गोया बहुत सी दलीलें हैं तुम्हारे रब की तरफ से, और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। कितनी प्यारी सिफात हैं इस कुरान की जो अल्लाह सुबहाना ताला आपके मेरे सामने लाते हैं। तो लिहाजा फरमा दिया, खूबसूरत मैनर है कुरान सुनने और पढ़ने का। वैज़ा कुरियल कुरआन फस्तमिउ लहू वंसितू लअल्लकुम तुरहमून। और जब कुरान पढ़ा जाया करे तो इसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, उम्मीद है कि तुम पर रहमत हो। और ऐ शख्स, अपने रब की याद किया कर अपने दिल में आजजी के साथ और खौफ के साथ और जोर की आवाज़ की निस्बत कम आवाज़ के साथ, सुबह और शाम, और अहले गफलत में से ना हो जाना। क्या पता चला कि इस कुरान को वैल्यू दो। अब देखिए, फन से तू बिल्कुल खामोश हो जाओ, मुंह बंद कर लो, आगे से जुबानें ना खुले। इसके हुक्म मानने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जिस चीज़ की इज्जत नहीं करते ना, अभी पूरी बात नहीं होती आगे से बोलना शुरू होते हैं। तो जब कुरान की तिलावत चले, खामोश रहिए। जब कुरान की क्लास हो रही है, खामोश रहिए। बीच में बच्चों का शोर, बीच में फोन्स को अटेंड करना, बीच में इधर उधर की इंस्ट्रक्शंस लेना, कभी सोचिए उस्ताद सामने हो तो हम ये कर सकते हैं? अल्लाह के नबी यहाँ मौजूद होते, जिनके ऊपर ये कुरान नाजिल होता, तो क्या हम उनकी महफिल में उठते बैठते? तो ये हमारा एक अजीब सा कल्चर बन गया कि बैकग्राउंड नॉइस की तरह हम तिलावत चला देते हैं, बातें शुरू करते हैं। दरसों के शुरू में देखिए, बस लोग तिलावत चलाते हैं, लोग बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। असल में लोग चुप कराना चाहते हैं, ये सोचते हैं अभी जरा और बातें कर लें, शायद स्पीकर के आने में देर है। और जहां मेरे जैसा गुनाहगार बंदा बात शुरू करे, ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाए। तो इसका अंत है कि हमें कुरान से मोहब्बत तो है लेकिन समझ नहीं आती। अक्सर सोचती हूँ ऐसा क्यों होता है, तो उसकी वजह यह कि मेरी बात चूंकि समझ आ रही है तो दूसरों की तो समझ नहीं आ रही। तो ये आसमानों से आया हुआ कलाम है, इसकी कदर कीजिए। कुरान क्लास शुरू करने से पहले अपने फ़ोन को बंद कीजिए, सिवाय अपनी क्लास के लेने के लिए, जिस मीम से भी लेते हैं, जहाँ भी हैं बस उसके बाद बंद। अगर ऑन साइट क्लासेस में जाते हैं तो फोन बंद, कुछ भी नहीं होगा। और साथ ही साथ दिल और दिमाग की बातें भी बंद कीजिए। बस दफा हम अपने हिसाब से तो चुप करते हैं, लेकिन दिल में ख्याल आते, आज क्या पकाना है, आज किधर जाना है, अच्छा अब क्लास के बाद क्या करूँ, तो इससे अपने आप को रोकना है। और अब आखिरी आयत है सूरत की, इन्नल्लज़ीना इंदा रब्बिका ला यस्तकबिरूना अन इबादतिह। यकीनन जो तेरे रब के नज़दीक हैं, मुराद क्या फरिश्ते, वो इसकी इबादत से तकब्बुर नहीं करते और इसकी पाकी बयान करते हैं और इसको सजदा करते हैं। फरिश्तों की बात है, कितने प्यारे हैं वो फरिश्ते कि जिनकी ज़िंदगी भी पाकीज़ा और जो इबादत से अपने आप को बड़ा भी नहीं समझते। ये पहला मुकाम है जहाँ कुरान पाक में सजदे की आयत है। और याद रखिए कि सजदा करना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, कोई ना कर सके तो गुनाह नहीं, यानी आप कह लीजिए कि वाजिब नहीं है, मुस्तहब है। और इसकी दुआ कौन सी होती है? सजद वजही लिल्लज़ी खलक़हू वसव्वरहू वशक्क समअहू वबसरहू। और इसका तर्जमा सुनेंगे तो वाकई दिल खुश हो जाता है। सजदा किया मेरे चेहरे ने उस हस्ती को जिसने इसको पैदा किया, जिसने इसकी सूरत बनाई और जिसने कान और आंखें शक कर दी। छोटे छोटे कट्स होते हैं जब बेबी दुनिया में आता है, मैं जब भी देखूँ तो मुझे यही दुआ याद आती है। तो आप जब चाहें कर लें, करना भी चाहिए, अभी नहीं कर सकते बाद में कर लीजिए, इकट्ठे करने वाली बात आपकी अपनी मर्जी के, कुछ लोग पूरे एंड पे करते हैं। तो आप देखिए कि बीच बीच में सजदे करने से इंसान असल में ये भी कह रहा होता है कि अल्लाह मैं सुनने की नीयत से और अमल की नीयत से पढ़ पढ़ा रहा हूँ। फिर इसके बाद आप देखिए कि आप थोड़ा सा सूरत का खुलासा करते हैं ताकि फिर हम अगली खूबसूरत सूरत पे चलें। तो माल का फितना सूरत अल अराफ में बहुत नुमायाँ था। मसलन शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का फितना फितना माल था। आप 88-93 में पढ़ चुके कि कैसे छोटी सी डंडी मार के अपने माल को नापाक कर लेते थे। फिर इसी तरह माल और रिस्क में इजाफे के असबाब हमने पढ़े 96 आयत में। जादूगरों की माल से आजमाइश की गई, यानी लालच तो था लेकिन वो कामयाब हो गए, 113 सूरत अल अराफ में देखा। फितने माल में मुबतला इंसान का सफ़र सबीलुर रुश से सबीलुल गई का, 146 में देखा। और उम्मते मुसा का फितना बछड़ा था, उम्मते मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फितना माल का है, 148 अल अराफ। और माल और ख्वाहिश परस्त दुनियादार इंसान के लिए कुत्ते की मिसाल देखी, आयत नंबर 176। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमारे दिल से माल की मोहब्बत ख़त्म कर दे। देखिए माल मिले, माल की मोहब्बत ना हो, क्योंकि जब सेंध सेंध के रखते हैं ना माल को, तो फिर उसी को कमाना, उसी को सजाना है। अब इसके बाद है सूरत अल अनफाल। तरतीब के अतबार से 8वीं सूरत है, 75 75 आयते हैं। अनफाल नफल से है, नफिल कहते हैं फ़र्ज से आगे बढ़ के, तत्व्वो जिसको आप कह सकते हैं। और ये सूरत असल में गज़वे बदर के बाद उठने वाले कुछ सवालों के जवाब में नाजिल हुई थी कि गज़वे बदर चूँकि पहली जंग थी तो पता नहीं था कि जो दुश्मनों से माल मिलता है उसको क्या किया जाए, क्योंकि इससे पहले के दौर में तो जो भी माल दुश्मन से मिलता तो उस पर लूट मार पड़ जाती थी। पिछले अम्बिया के दौर में माल गनीमत खुले मैदान में रखा जाता था, आसमान से आग आती थी और उसको जला देती थी। तो उम्मत मुस्लिमा के लिए ये चूँकि मौका था, सवाल माल का किया, जवाब मिलेगा 10वें पारे की पहली आयत यानी 41 आयत में। और ये 40 आयतें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें तरबियती सेशन, कि अभी माल की क्या फिक्र करते हो, ज़रा अपने आपस के ताल्लुकात तो देखो, अपना तस्किया तो करो, अपनी तरबियत भी करो। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन आयात को आप देखेंगे कि जंगों के किस्सों के बीच में जो उम्मत को बनाने वाले गुण थे ना वो सिखा दीजिए। और अल्लाह ताला ने इसी किस्म के हालात रखे, पढ़ते जाएंगे और अपने लिए अमल के मोती चुनते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसलूनक अनिल अनफाल कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर्रसूल फत्तकुल्लाह वस्लिहू ज़ात बैनिकुम वअतीउल्लाह वरसूलहू इन कुंतुम मुमिनीन। ये लोग आपसे गनीमतों का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, आप फरमा दीजिए कि ये गनीमतें अल्लाह की हैं और रसूल की हैं, यानी तुम इसके बारे में क्यों इतने फिक्रमंद हो? बस तुम अल्लाह से डरो और अपने बाहमी ताल्लुकात की इसलाह करो और अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान वाले हो। ये ऐसे जैसे बच्चा अपने माँ बाप से माली बातें पूछे, अबू कितने पैसे लाते हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, उधर क्या, वो कितने की चीज़ आई, तो बच्चों के मुँह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का रुख किस तरफ मोड़ा कि पहले ज़रा अपने आप को तो देखो, जब तक याद रखिए अल्लाह और उसके रसूल का हक समझ ना आए दीन में, अल्लाह का तकवा ना आए, आपस के ताल्लुकात बेहतर ना हो, और अतीउल्लाह और अतीउर रसूल पे अमल ना हो। कभी माल के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों में अगर हमें डाले तो सुरखरू भी कर दे। बस ईमान वाले तो ऐसे होते हैं कि जब अल्लाह का जिक्र आता है तो इनके कुलूब डर जाते हैं। वही बात जो शुरू में की, जब तक दिल में अल्लाह का खौफ ना हो, इल्म भी ना दीजिए दूसरों को, क्योंकि बहुत असर होता है उस्ताद का, वो तो एक क्राइटेरियन होता है। बेखौफी के काम भी करते जाना, अदाएं भी वही हों कि जिसको देख कर लगे कि खौफ कुछ कम है, तो आप चाहे एक एक लफ्ज़ के 10-10 मानी लिखा दें और एक एक आयत पे 10-10 हदीसें लिखा दें, बात नहीं बनती। और ख़ास तौर पे आप देखिए कि यहाँ ईमान की बात है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जिक्र के वक्त यानी जब अल्लाह का जिक्र आए तो बंदे का दिल जैसा होगा ना, ये उसकी असल होती है। और ईमान कोई मामूली चीज़ नहीं है, एक ईमान वाले की ज़िंदगी और एक बग़ैर ईमान वाले की ज़िंदगी दो मुख्तलिफ़ ज़िंदगियाँ होती हैं, ये दो मुख्तलिफ़ तजुर्बात हैं, दो मुख्तलिफ़ कैफियात होती हैं। हकीकी ईमान तो इंसान को अंदर बाहर से बदल देता है, अंदर एक हलचल पचती है। सच्चा ईमान जब इंसान के अंदर जाता है ना, तो नज़र बदलती है, कान बदलते हैं, हर मेयार बदल जाता है, वो हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत तलाश करता है। क्यों कहा कि अल्लाह मेरी नज़र को इबरत वाली कर दे, बनसरी इवरी इबरत आने वाली हो। फिर सुनने की चीज़ें बदल जाती हैं, ज़ुबान से झूठ आता नहीं, लफ्ज़ से नफ़रत होती है, और फिर अल्लाह का जिक्र अंदर से तड़पा देता है। ये वो कैफियात है जो अल्लाह ताला ने इस आयत में पेश कर दी कि अल्लाह का जिक्र हो और दिल ना कांपे। ये उसी का होगा जिसके अंदर यकीन नहीं होता। एक मौके पर किसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो से कहा, या उमर इत्तकिल्ला, इतनी खशियत तारी हुई कि कांपने लगे और अपना गाल ज़मीन पर रख दिया कि तूने मुझे बहुत बड़े का खौफ दिला दिया। तो जब एक ईमान इस तरह से उथल पुथल होता है, फिर ऐसे बंदे को अल्लाह से मोहब्बत भी होती है, फिर अल्लाह पे भरोसा करता है, अपनी ज़िंदगी का हर मामला अल्लाह पे डालता है। अपने आपसे पूछिए, कुरान पाक की आयतों को पढ़ते हुए ईमान बढ़ रहा है? और वो ईमान ईमान ही नहीं है कि जिससे तब्दीली ना हो। सच्ची तब्दीलियाँ लाने के लिए ईमान की ज़रूरत है। तो अपने दिलों को चेक किया करें, कभी कभी ये टेस्ट भी करके देखें। तिलावत चलती है, कांप जाती हूँ, कुरान की तफसीर हो रोती है तो क्या मेरा दिल डर रहा होता है? और ये ईमान की सिफत है, ईमान वाले अल्लाह का जिक्र सुन के डर जाते हैं। और इसी तरह याद रखिए कि वो शख्स जो जुल्म और नाफरमानी करना चाहता है और जब उसे कहा जाए कि ना करो तो वो अल्लाह से डर जाए, ईमान की अलामत है। किफल का एक वाक्या है, इसकी तफसील में अगर आप बाद में कभी सुनना चाहें, कि ऐन ऐसे कमज़ोर लम्हों में जिसमें एक आम इंसान काबू ना पा सके खुद पे, सिर्फ उस औरत की पुकार पे कि या किफल इत्तकिल्ला, अल्लाह का जिक्र आ गया तो वो पीछे डर गया, कहने लगा जा तुझे माफ़ किया, पैसे भी ले जा। तो अल्लाह ताला की अजमत से दिलों पर कप कपी आनी चाहिए। नाफरमानी करते वक्त जब इंसान को रब याद आ जाए तो उस नाफरमानी में मज़ा क्या रहेगा, और जब नाफरमानियों की इरादे करे फिर वो अल्लाह को याद करते हुए अपने गुनाहों से किनारा कशी कर ले, उसी का दिल इस बात की अलामत है कि उसका दिल ईमान से भरा हुआ है। अपने बच्चों को भी अल्लाह का खौफ दिया करें, और दिल जब डरे उसमें रिक्कत पैदा हो, अल्लाह के जिक्र की अजमत हो। और ये कुरान की छोटी चीज़ है, लो अनजल ना हाजल कुरान अला जबल लरई तो खुखाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता, कांपने लगता, टुकड़े टुकड़े होता, तो आप में अल्लाह के नाम को मजाक ना समझें। क्योंकि यहाँ आप नोट कर रहे हैं कि इज़ा ज़ुकिर अल्लाह की बात है, कुरान की आयतों की बात तो आगे आ रही है, वजिलत कुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम, तो लफ्ज़ अल्लाह काफ़ी है एक ईमान वाले के दिल को तोड़ने के लिए। और जब इंसान इस तरह टूटता है ना, फिर आजिज़ी आती है, फिर अंदर का किबर और बड़ाई ख़त्म होती है, फिर नरमी भी आती है, सुकून भी आता है, वक्कार भी आता है। और इसको मांगिए, ये रमज़ान की घड़ियाँ, इस वक्त आप देखिए कि कई साथी अपने वक्त के हिसाब से रोज़े से होंगे ना, तो ये जो अंदर एक कच्चेपन की कैफियत और एक जिस्म के अंदर नकाहत है ना, इसको बहुत ही बड़ी एक अपने लिए चीज़ बनाइए कि अल्लाह अगर पहाड़ झुकता है तो मेरा दिल क्यों नहीं झुकता, मैं क्यों नहीं अपनी मर्जियाँ छोड़ रही, मैं अपनी पसंद नापसंद क्यों नहीं छोड़ती। बस वो पूरा कुरान हिफ्ज़ किया होता है, दिल सख्त है, रात दिन कुरान कुरान की बातें होती हैं, बंदों से प्यार ही नहीं है, हर वक्त फतवे और इस तरह की बातें, गोया के खशियत नहीं है। और जितनी खशियत ज़्यादा आएगी ना, आप देखेंगे अमल ज़्यादा होगा। एक छोटी सी मिसाल लीजिए कि किसी भी चीज़ को गलाना हो तो पहले नरम करते हैं ना, सख्त गोश्त को आप खा सकते हैं, चूल्हे पे चढ़ाते हैं, पानी डालते हैं और नीचे हीट होती है, जब गलता है फिर मसाले मिर्चें डालिए, जो कीजिए, खाएंगे तो लज्जत मिलेगी। तो इस दिल को गलाने की ज़रूरत है, गला हुआ टूटा हुआ दिल अल्लाह को बड़ा प्यारा लगता है। कुरान पाक में बेशुमार इसकी आयतें हैं। सिर्फ एक चीज़ को जो आप पीछे पढ़ चुके हैं सुन लीजिए और फिर आगे चलते हैं। क्या कुरान सुनते वक्त मेरी आंखों से आंसू बहते, क्योंकि पढ़ के आई हूँ पीछे, वाइजा समी मा उन्जिला रसूल, रसूल पर उतरा हुआ कलाम सुनते हैं तो उनकी आंखों का हाल क्या है कि आयुना हम तफीदु मिन दमी मिम्मा रफू मिन अल हक। बस ये क्राइटेरियन अपने लिए बना लीजिए, आप देखेंगे कि इसके बाद हकीकत में आपको इस चीज़ का यकीन आ जाएगा। खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान सुन के रोते थे, और दूसरों से सुनना, और ख़ास तौर पे आप देखिए सूरत निसा की वो आयत जो पीछे ही गुजरी है, फ़कई फ़ैज़ा जी न मिन कुल्ली उम्मतिन भी शहीद, इस एक आयत पे ठहरे और आंखों में आंसू थे। और याद रखिए कि अल्लाह की खशियत तो बेजान चीज़ों पर भी है कभी कभी, तो अल्लाह ताला मुझे आपको अपना खौफ दे दे। सख्त दिली होगी उस शख्स की जिसके दिल में कुरान सुनकर खौफ ना आ जाए। एक रिवायत में आता है कि अनकरीब ये कुरान कुछ लोगों के सीनों में पुराना हो जाएगा, जैसे कपड़ा पुराना होकर फट कर गिर जाता है। वो कुरान को पढ़ेंगे लेकिन इसमें कोई लुत्फ और लज्जत नहीं पाएंगे। वो भेड़ियों के दिलों पर भेड़ों की खालें पहनेंगे, और इनका अमल तमा और लालच के लिए होगा लेकिन इसमें अल्लाह का खौफ नहीं होगा। अगर वो अमल करेंगे तो कहेंगे हम अनकरीब जन्नत तक पहुंच जाएंगे, और अगर बुरे अमल करेंगे तो कहेंगे हमें मुआफ़ कर दिया जाएगा, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते। ये दारमी की रिवायत है 3346, और रावी हैं हमारे पास जो सन्नत पहुंची माज बिन जबल से। तो अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों में हों। तीन मवाकिक पे अपने आप को देखिएगा, कुरान सुनते वक्त दिल का क्या हाल होता है, जिक्र की मजलिसों में क्या करती हूँ, और तन्हाई के औकात में। अगर इन जगहों में दिल ना लगे अल्लाह की तरफ तो फिर अल्लाह से दुआ कीजिए कि ऐसा दिल दे दे कि जो दिल दिल मुर्दा नहीं दिल जिंदा हो, दिल मुर्दा दिल नहीं इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्दे कोहन का चारा, ईमान कुफर निफाक दिलों के सौदे हैं। एक वो जिसका दिल मर चुका, एक वो जिसका जिंदा तो है लेकिन कुरान से कोई मोहब्बत नहीं है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी खशियत दे दे, अपना खौफ दे दे। और फिर इसके बाद होता क्या है, जब ये ईमान उनके अंदर आ जाता है तो उनका दिल खुल जाता है और रब पे तवक्कुल बढ़ता है, जो कि नमाज की पाबंदी करते हैं और हमने इनको जो कुछ दिया है वो इसमें से खर्च करते हैं। सच्चे ईमान वाले ये लोग हैं, इनके बड़े दर्जे हैं, इनके रब के पास और मगफरत और इज्जत की रोजी है। तो अब देखिए कि सहाबे कराम का सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और मिला। इससे पता चलता है कि जरूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब वही दे जो अगला सोच रहा हो, सवाल के बदले में एक सवाल भी किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ है। तो सहाबे कराम को हिदायत क्या मिली, माले गनीमत के बारे में सवाल करने की बजाय अपनी तीन चीज़ें इम्प्रूव करो। नंबर एक, अल्लाह का तकवा, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो, और आपस के ताल्लुकात की दुरुस्तगी करो, क्योंकि याद रखिए आपस के तो इख्तलाफात नेकियों को मूंड देते हैं। आपने फरमाया मैं ये नहीं कहता कि बालों को मूंडते हैं बल्कि वो तुम्हारी नेकियों की खेती को मूंड देते हैं। तो हमेशा दीन का काम करने वालों को इस पे गौर करना चाहिए। नंबर एक, अल्लाह का तकवा है, और जो काम है मेरे पास वो अतीउल्लाह और अतीउ रसूल के मुताबिक है, तरीका गलत तो इख्तियार नहीं कर रहा, और इसी तरह से आपस में ताल्लुकात अच्छे हों। इसके बाद अब आगे आप देखिएगा कि गज़वे बदर का वो मंजर जो घर से निकलते वक्त था, और हकीकत है कि अल्लाह के नबी का निकलना अल्लाह ही के नाम पे था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जंगों के लिए निकलते थे या तबलीग के लिए निकलते थे, हम तो बड़े अच्छे आरामदेह माहौल में बैठकर भी अगर अल्लाह की बात सुने तो कभी कभी हमें वो भी बोझ लगती है। तो फरमाया कमा खराजा कर अबू कमीम बेती का बिल हक, जैसा कि आपके रब ने आपके घर से हक के साथ आपको रवाना किया, और मुसलमानों की एक जमात इसको गिरा समझती थी, वो इस हक के बारे में इसके बाद किसका जहूर हो गया था, आपसे इस तरह झगड़ रहे थे गोया को इनको मौत की तरफ हांके लिए जाता है और वो देख रहे हैं। और तुम लोग इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह तुमसे इन दोनों जमातों में से एक का वादा करता था कि वो तुम्हारे हाथ आ जाएगी, और तुम इस तमन्ना में थे कि हथियारों से बगैर वाले गिरोह का तुमसे सामना हो। इशारा है अबू सुफियान और अबू जहल के लश्करों में, और अल्लाह ताला को ये मंजूर था कि अपने काम से हक का हक होना साबित करे और इन काफिरों की जड़ काट दे, ताकि हक का हक होना और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए, गो ये मुजरिम लोग इसको नापसंद ही करें। और इस वक्त को याद करो जबकि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली कि मैं तुमको 1,000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आएंगे, और अल्लाह ताला ने ये इमदाद महज इसलिए की कि बशारत हो और ताकि तुम्हारे दिलों को करार हो जाए, और मदद सिर्फ अल्लाह ही की तरफ से है जो कि ज़बरदस्त हिकमत वाला है। पीछे भी हम गज़वे बदर के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके, वो बातें जहन में ले आइए। कैसे मुसलमानों के सामने दो गिरोह थे, लेकिन बशरी तकाजे से इंसान तो वही गिरोह चाहेगा कि जिसमें हथियार नहीं हो बल्कि माल हो, लेकिन अल्लाह ताला हक को साबित करना चाहता है, लिहाजा यही सब कुछ हुआ। तो गज़वे बदर के तनाजर में यहाँ वॉर एथिक्स भी सिखाए जा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मोमिन की जंग जो है वो माल जमा करने के लिए नहीं होती, वरना तो बहुत आराम से दूसरे गिरोह के साथ अल्लाह ताला टकराव करा देते। और यहाँ अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, क्यों? सिर्फ दिलों की मजबूती के लिए। याद रखिए कि अल्लाह ने फरिश्तों से जंग नहीं करवाई, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम से खिलाफत का काम लेना था, तस्खीरे कायनात का काम लेना था, तो फरिश्ते सिर्फ आए थे फसब्बितुल्लज़ीन आमनू के लिए। तो ये जो बात है ना कि मदद अल्लाह की तरफ से है, तो ये बात जहन में रखिएगा। बाज़ लोग गलत फहमी में कहते हैं कि फरिश्ते लड़े और उन्होंने ये किया, ठीक है जो भी हुआ, लेकिन अल्लाह ताला चाहता तो इसके बगैर भी कर सकता था, लेकिन मुसलमानों को एक किस्म की सपोर्ट दी और उनके कदमों को जमा दिया। और फिर जंग का एक मंजर, जिस वक़्त मुसलमान मैदान जंग में उंग रहे थे, इस युग शीकुम नवास, इस वक्त को याद करो जबकि अल्लाह ने तुम पर ऊँग तारी कर दी अपनी तरफ से चैन देने के लिए, और तुम पर आसमान से पानी बरसा रहा था कि इस पानी के जरिए से तुमको पाक कर दे और तुमसे शैतानी वसवसे को दूर कर दे और तुम्हारे दिलों को मजबूत कर दे और तुम्हारे कदम यानी तुम्हारे पाँव जमा दे। ये है अल्लाह की मदद। जब आप अल्लाह के रस्तों में निकलते हैं ना, गैब से मदद आती है। कल जंगों में आती थी, आज इंशाल्लाह इल्म के इस रास्ते में आएगी। शर्त यह कि नजरें अल्लाह पे लगा दीजिए। इस वक्त को याद करो जबकि आपका रब फरिश्तों को हुक्म देता था कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, बस तुम ईमान वालों की हिम्मत बंधाओ, मैं अभी कुफार के दिलों में रोप डाले देता हूँ, बस तुम गर्दनों पर मारो और इनके पोर पोर को मारो। अल्लाह अकबर, फरिश्तों को अल्लाह ताला इस काम पे लगा रहा है, किस वजह से? क्योंकि ईमान था। तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब ईमान ऐसा होता है तो वही बात है कि फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को। आज भी उतर सकते हैं, आज का मुसलमान अगर डिजर्व करता हो तो अल्लाह के पास आज भी फरिश्तों की कमी नहीं। और इन कुफार को क्यों मारो? इसलिए कि ये इस बात की सजा है कि उन्होंने अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत की, और जो अल्लाह की और इसके रसूल की मुखालफत करता है, बस बेशक अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। सो ये सजा चखो और जान रखो कि काफिरों के लिए जहन्नुम का अजाब मुकर्रर ही है। ये बात उन्हीं को बुरी लगती है जिनको अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत ना हो। देखिए, किसी को मुखालफत करता देख कर दीन की आपके दिल में कुछ ना हो, ये इस बात की दलील है कि ईमान को बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐ ईमान वालो, जब तुम काफिरों से दू बदू मुकाबिल हो जाओ यानी आमने सामने, तो इनसे पुश्त मत फेरना। और जो शख्स इनसे इस मौके पर पुश्त फेरेगा, मगर हाँ जो लड़ाई के लिए पैंतरा बदलता हो या जो अपनी जमात की तरफ पनाह लेने आता हो, तो वो मुस्तस्ना है। नोट कीजिएगा, जब दीन को ज़रूरत हो आपकी और आप पीछे हो जाएं, आप तमाशा देखें, मज़े देखें, अच्छा देखते हैं क्या करते हैं फिर, चले मेरे बगैर कोई करके तो दिखाए और मैं ना पढ़ाऊंगी तो कौन पढ़ाएगा। तो याद रखिए, कबीरा गुनाहों में से है मैदाने जंग से पलटना, क्योंकि ऐसा शख्स अपनी जान बचाकर इस्लाम की जान को खतरे में डाल देता है। बाकी और जो ऐसा करेगा वो अल्लाह के गजब में आ जाएगा और इसका ठिकाना दोजख होगा, जो बहुत ही बुरी जगह है। अल्लाह की नज़र हर एक्शन पे। तो 16 आयात, इनके अंदर हमने क्या देखा? बंदे मोमिन की जाहरी और बातनी सिफात बयान कर दी गई, ख़ास तौर पे अल्लाह के रास्ते में काम करने वालों में क्या खूबियाँ आनी चाहिए। फिर बदर से कबल मुशावरत हुई थी, क्या किया जाए, किधर जाया जाए, मशवरे के साथ काम अच्छे होते हैं। कोई इंसान काम करके बताए या खुद कर ले और किसी को बताए भी ना, याद रखिए इससे टीम नहीं बनती, इससे टीम टूटती है। फिर इसी तरह अल्लाह ताला की मदद और फरिश्तों का नज़ूल देखा और दौराने जंग मुसलमानों को हिदायत फरमाई। अब हुआ क्या? तलवारें तो पहले ही मुसलमानों के पास थोड़ी थी, वो भी टूट गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मैदान जंग को देखा तो अपरीश से उतरे, ज़मीन पे पड़ी हुई मिट्टी को एक मुट्ठी में भरा और ज़ोर से मैदान जंग में बखेर दिया। अल्लाह के हुक्म से कुफार की आंखों में मिट्टी गई, उनकी आंखें चुंधियाई गईं और इसी तरह से उनकी तलवारें जब नीचे गिरी तो वही फिर मुसलमानों ने पकड़ी और उससे फिर जंग का फैसला हुआ। इस मंजर को क्या खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, फलम तख्तुलूहुम वलाकिन अल्लाह कतलहुम वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। सो तुमने इन्हें कत्ल नहीं किया लेकिन अल्लाह ताला ने इनको कत्ल किया, और आपने खाक की मुट्ठी नहीं फेंकी बल्कि अल्लाह ताला ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से इनकी मेहनत का खूब इवज़ दे। बिलाशुबा अल्लाह ताला खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला। इस जुमले को अपना स्लोगन बना लीजिए, अच्छी नीयत से, अच्छे तरीके से अल्लाह के रास्ते के काम करते जाइए। इस बात की ज़्यादा फिक्र ना करें कि इसके नतायज क्या होंगे, इसके बाद क्या होगा, उधर से इधर, इधर से उधर। नहीं, अल्लाह का काम है, मुंह से बात निकालो। जब अल्लाह ताला वो पत्थरों को पहुंचा सकता है, तो आज भी देखिए आप एक बात मुंह से निकालिए इखलास से, सच से, और अमल की कोशिश कीजिए, अल्लाह उसको कहाँ तक पहुंचा देगा आप तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। एक बात तो ये हुई, और दूसरी बात ये है कि अल्लाह ताला को काफिरों की तदबीर को कमज़ोर करना था, और अगर तुम लोग फैसला चाहते हो तो वो फैसला तुम्हारे सामने आ मौजूद हुआ, और अगर बास आ जाओ तो ये तुम्हारे लिए नहायत खूब है, और अगर तुम फिर वही काम करोगे तो हम भी फिर वही काम करेंगे, और तुम्हारी जमीयत तुम्हारे ज़रा भी काम ना आएगी गो के कितनी ही ज़्यादा हो। और वाकई बात यह है कि अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। क्या खूबसूरत अदब सिखा दिए। फिर फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ऐ ईमान का दावा करने वालों, ऐ ईमान के साथ ताल्लुक जोड़ने वालों, अतीउल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानो, और इसका कहना मानने से रूगर्दानी मत करो, और तुम सुन लेते ही हो। सुनो तो सही, गौर तो करो, और तुम इन लोगों की तरह मत हो जाना जो दावा तो करते हैं कि हमने सुन लिया, हालांकि वो सुनते सुनाते कुछ नहीं। अल्लाह ना करे हम में से किसी की बात हो, सिर्फ लब्बैक लग जाए, सिर्फ रूम खोल कर बैठ जाए, कानों पे टकराती जाएं लेकिन दिल पे ना उतरें। अल्लाह ना करे कि हम ये खयानत करने वाले बन जाएं इस इल्म के साथ। बेशक बदतरीन मखलूक अल्लाह ताला के नज़दीक वो लोग हैं जो बहरे हैं, गूंगे हैं, जो कि ज़रा भी नहीं समझते, और अगर अल्लाह ताला इनमें कोई खूबी देखता तो इनको सुनने की तौफीक दे देता, और अगर इनको अब सुना दे तो ज़रूर रूगरदानी करेंगे बेरुखी करते हुए। याद रखिए, जैसे किसान कभी बंजर ज़मीन पे हल नहीं चलाएगा, इसी तरह से आप देखिए कि सोना चांदी निकालने वाले कभी ऐसी जगह से खुदाई नहीं करेंगे जहां उम्मीद ही ना हो। बिल्कुल अल्लाह ताला उसी बंदे को कुरान सुनाता है जिनमें आप लोगों की तरह खैर होती है। अपने आप को मुबारक दीजिए, खुशी है आपके लिए, आपका यहाँ आके बैठ जाना, अपने अपने घरों से सुनना, और इसी तरह इसको इसका ड्यू हक देना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपके अंदर खैर देख रहा है। अल्लाह बेखैरे को कभी अपना कलाम नहीं देता, ये याद रखिए। अब ये आपका काम है, और दुआ में दुआ रखिए, अल्लाह मेरे अंदर की खैर बाहर ला। अल्लाह इसी दौरे कुरान में मुझे डिसाइड करने की तौफीक दे कि मेरी खूबी क्या है, मेरी कमी क्या है, और मैंने आगे अल्लाह के दीन को कैसे सर्व करना है। देखिए वो होंगे आपके साथ मोजज़े कि जो आज तक आपने कभी सोचे भी ना हो। फिर फरमाया, अय्युहल्लज़ीना मनुस्तजीबुलिल्लाही वलिर्रसूल इज़ा दअकुम, बड़ी खूबसूरत आयत है, इस पे कई दफ़ा दर्स हो चुके हैं, सुनने के लायक आयत है ये तफसीर के एतबार से। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह और रसूल के कहने को बजा लाओ जबकि रसूल तुमको तुम्हारी जिंदगी बख्श चीज की तरफ बुलाते हों। ये कुरान, ये तबलीग, ये दीन की जद्दोजहद, ये जिंदगी बख्शती है, और जान रखो कि अल्लाह ताला आदमी के और उसके कल्ब के दरमियान आड़ बन जाया करता है। कब, जब बंदा इस दावत पे लब्बैक नहीं कहता, फिर तौफीक छिन जाती है। और बिला शुबा तुम सबको अल्लाह ही के पास जमा होना है, और तुम ऐसे वबाल से बचो कि जो खास इन्हीं लोगों पर वाकई ना होगा जो तुम में से इन गुनाहों के मुर्तकिब हुए हैं, और ये जान रखो कि अल्लाह ताला सख्त सजा देने वाला है। और इस हालत को भी याद करो जबकि तुम जमीन में कलील थे, कमजोर शुमार किए जाते थे, इस संदेश में रहते थे कि तुमको लोग नोच खसोट न लें, यानी तुम्हें खत्म ही ना कर दें, बस अल्लाह ने तुमको रहने की जगह दी और तुमको अपनी नुसरत से कुव्वत दी और तुमको नफीस चीजें अता फरमाई ताकि तुम शुक्र करो। क्या था मक्का में स्टेटस मुसलमानों का, छुपते छुपाते तो इबादत होती थी, तो अल्लाह ताला कैसे साथ ही साथ सहाबा कराम को माजी याद दिलाता है। याद रखिए, बंदे को अपनी असल नहीं भूलनी चाहिए। चाहे वो करोड़पति हो जाए ना, तो अगर कभी छाबड़ी लगाता था तो उसको छाबड़ी को छुपाना नहीं चाहिए, ये तो सीढ़ी थी उसके करोड़पति होने के रास्ते की। बस लोग ढींगे मारते हैं। इसी तरह अगर आज आपके थोड़ा सा इल्म आ गया तो मत भूलिए उस वक्त को जब कुछ भी नहीं पता था। अजी रहेगी, आप में नरमी रहेगी, आप दूसरों को जहन्नमी और खराब और बुरा भला नहीं कहते रहेंगे। और इसी तरह से आप देखिए कि अल्लाह ताला इसमें हमें ये भी बताते हैं कि हर चीज जो भी आपको मिली है वो अल्लाह की तरफ से है। यहाँ देखिए कि वत्तकू फितनतन का लफ्ज़ जो आया था, तो फितना फिर यहाँ क्या मुराद है? आजमाइश। और ये कौन सी आजमाइश होती है? कि जब एक इंसान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल नहीं करता और उसके खिलाफ काम करता है। आगे फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूल, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह और रसूल के हकूक में जानते बूझते खयानत मत करो, और अपनी काबिले हिफाजत चीज़ों में खयानत मत करो, और तुम जानते हो। ला तखूनू किसको कहा जा रहा है? हमें कहा जा रहा है, जानते बूझते अपनी जिम्मेदारियों को पीछे ना डाल दो, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को पीछे ना करो, सुन्नतों को जिंदा करो। अल्लाह ने तुम्हें जो कुछ दिया उसको पाकर और ही ज़्यादा अल्लाह से दूर ना हो जाओ। तो हम अपने आप को भी चेक करें, क्या कहीं जिम्मेदारियों में, माल में, बातों में खयानत तो नहीं है? किसी की बात सुनी और उसको आगे से आगे भेज दिया, जो सिर्फ आप तक रहनी थी बात आपने उसको दूसरों तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह ताला हमें ऐसी हर खयानत से महफूज रखे। और रह गई वो दुनिया, वो बच्चे जिनको पाने के लिए बार बार रुश्त के रास्ते से गई के रास्ते पे आते हो, तो खूब सुन लो, क्या कि तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल आजमाइश हैं। वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वअन्न अल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, और तुम इस बात को जान रखो कि तुम्हारे अम्वाल और तुम्हारी औलाद एक इम्तिहान की चीज़ है, और इस बात को भी जान रखो कि अल्लाह के पास बड़ा भारी अजर है। क्या पता चला? हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा। लिख लीजिए हर बच्चे के नाम पे, लिख लीजिए ये एक मेरा सब्जेक्ट है, एक मेरा दूसरा। फितना क्यों कहा गया? लोग माइंड करते हैं इस बात को, तो याद कीजिए इंट्रोडक्टरी लेसन को कि फितना कहते हैं जो चीज़ अपनी असल के एतबार से नेमत हो लेकिन उसका मिसयूज़ उसको बुरा बना दे। तो औलाद और माल फितना कब बनते हैं? जब उनकी अच्छी तरबियत ना की जाए और उसको कमाने में हराम रखा जाए या खर्च करने में हराम किया जाए। अल्लाह ताला ने प्रायोरिटी लिस्ट दे दी जो लगता है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट से बिल्कुल अपोजिट है। हर चीज़ को आगे करते हैं, माल की बात, औलाद, घर, मुआशरा, खानदान, दोस्तें, छोटे छोटे बच्चों को हम पूछते हैं अल्लाह किधर है हमारी ज़िंदगी में। जितना ज़्यादा आप इस चीज़ पर गौर करेंगे आपको दिखेगा एक फ्लो चार्ट कि हमारा तर्ज़ अमल तय करता है क्या कि माल जहमत है कि रहमत, माल फजल है कि फितना, माल खैर है या शर, माल निजात दहिंदा है या सांप बनेंगे कल, और माल आखरत संवारने का जरिया है या आखरत बिगाड़ने का और सख्त हिसाब का जरिया। क्योंकि माल बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा है। जैसे छुरी बुरी तो नहीं है ना, छुरी ना होगी तो आप एक दिन भी शायद खाना ना बना सकें, लेकिन अगर किसी की गर्दन पे रख दें, किसी की उंगली पे रख दें, तो फिर फितना होगी। अब सवाल होता है कि माल फितना कब बनता है? क्योंकि आप देख लीजिए, चाहे इल्म के रास्ते से कोई गिरा, जैसे हमने वाक्या पढ़ा भी पीछे, या किसी भी जगह सहाबे सब्त हैं या कोई है, पीछे माल था, दुनिया की मोहब्बत। तो नोट कीजिएगा चंद चीज़ें कि माल फितना कब बनता है। पहली बात है जब हराम तरीके से हासिल किया जाए, जायज़ कामों पर खर्च ना किया जाए, नाजायज़ कामों पर खर्च किया जाए, माल कमाने और जमा करने की लत हो, यानी बस एक ही काम रह गया, जमा वाद दादा। फिर इसी तरह माल की मोहब्बत में इंसान हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद, हत्ता कि अपना आप भी और मकसद हयात भी भुला दे। माल इंसान में गुनाहों के रुझान का या मिलान का सबब बने, तब फितना बनता। और माल को आखरत कमाने, जिहाद और इशाते दीन की बजाय इसे बेकार मशगलों में ज़ाया कर दिया जाए। कसरते माल की वजह से इंसान लालची, खुदगर्जी और इसी तरह हिर्स और दीगर अखलाकी बुराइयों में गिरफ्तार हो जाता है। तो अपने लिए खुद एक चेक लिस्ट बना लीजिए, क्या मेरा माल मेरे लिए रहमत है कि जहमत, वो मेरे लिए एक नेमत है या एक फितना है। जितना ज़्यादा इसको सोचते रहेंगे उतना अल्लाह की रहमत आप पे आएगी। इसीलिए फिर फरमा दिया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजल लकुम फुरकाना, ए ईमान वालो अगर तुम अल्लाह से डरते रहोगे तो अल्लाह ताला तुमको एक फैसले की चीज़ देगा। दुआ करेंगे मिल जाए। बहुत सारे लोगों को इल्म मिल जाता है कुरान पढ़ के, फुरकान नहीं मिलता। सुनते बूझते जानते फिर घरों में सांप बिच्छू रखेंगे, फिर अपनी मर्जियां छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह की मर्जियां मानेंगे नहीं, तो फुरकान क्या है कि फर्क आया आपकी जिंदगी में? यू नीड टू चेंज नाउ। आखिर कब तक और कितना सुनोगे और कितनी बार सुनोगे? शायद ये आखिरी दौरे कुरान हो, तो सुनने और सुनाने वालों को अपना मुहासबा करना है। और क्या देगा? और तुमसे तुम्हारे गुनाह दूर कर देगा और तुमको बख्श देगा, और अल्लाह ताला बड़े फजल वाला है। और इस वाक़े का जिक्र भी कीजिए जबकि काफिर लोग आपकी निस्बत तदबीर सोच रहे थे कि आपको कैद कर लें या आपको कत्ल कर डालें या आपको खारिज वतन कर दें। प्यारे नबी, जिनका लकब सादिक और अमीन, जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ ना दी, लोगों ने उनको भी इस हक पहुंचाने की बुनियाद पे धमकियां देना और कत्ल करने के इरादे करने शुरू कर दिए। हिजरत से पहले की आयतें, और वो तो अपनी तदबीरें कर रहे थे और अल्लाह ताला अपनी तदबीर कर रहा था, और सबसे ज्यादा मुस्तहकम तदबीर वाला अल्लाह है। और जब इनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो वो कहते हैं हमने सुन लिया, अगर हम चाहें तो इसके बराबर हम भी कह दें। यानी ये कौन सी बड़ी बात है, हम भी पढ़ देंगे। दिल में तकब्बुर होता है ना, तो इंसान इल्म की महफिल में भी ऐसी ही बातें सोचता सुनाता है। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इल्म का एक खजाना थे, उनकी महफिलों में आए हुए कुछ ऐसे लोग जिनके दिलों में इल्म की तलब तो नहीं थी, मोटिव्स कुछ और थे, उन्हीं की तरफ इशारा किया जा रहा है। कुरान को तो असातीरुल अव्वलीन कहते थे, पिछलों की बातें, ओल्ड डेटेड बातें, और अपने बारे में कुछ और ही गुमान थे। फरमाया ये तो कुछ भी नहीं, सिर्फ बेसनत बातें हैं जो पहलों से चली आ रही हैं। वही बातें हर साल सुने, दौरे कुरान कितने को सुनेंगे भाई? दुआ कीजिए आप जिंदा रहें अगले साल के लिए, हर साल सुनेंगे, इसके बाद फिर सुनेंगे, इसके बाद सारा साल सुनते रहेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि कुरान की आयतों की महफिल में इंसान जब बैठा होता है ना, तो असल में दो किस्म के किरदार सामने आते हैं। एक वो होता है कि जो खुद बदल रहा होता है, और दूसरा वो होता है कि जो कुरान को बदलने की कोशिशों में होता है। अच्छा चले देखते हैं, इसको छोड़ो, अब पहली दफ़ा बहुत असर है, तो मैं आप में सुन साथियों से कहूँगी जो पहली दफ़ा सुन रहे हैं, तो अपनी इन फीलिंग्स को, अपने इन इमोशंस को कैद कर लीजिए। पहली दफ़ा का कुरान, पहला प्यार होता है, नई नई मोहब्बत होती है, बहुत बेखुदी होती है। कुछ अरसे बाद तो फिर इंसान बराबर ही हो जाता है हर चीज़ में। तो अगर इस वक्त दिल पिघल रहा है तो रो लीजिए, अगर इस वक्त दिल में आजिज़ी आ रही है तो आजिज़ हो जाए, इस वक्त अपनी को बुराई बुरी लग रही है, चुभ रही है, अभी छोड़ दीजिए, वरना यकीन कीजिए कि दूसरी दफ़ा सुनेंगे तो काबुल करते रहेंगे। कभी आप सोचिए सबसे पहले कब सुना, किससे सुना, कौन है आपका पहला उस्ताद, कब पहली महफिल थी, रो रो के नहीं उठते थे, आंसू आते थे तो शर्म आती थी कि लोग क्या कहेंगे, पता नहीं इनको कोई गम है। वो वक्त वापस ले आइए, क्योंकि अगली दफ़ा तो आप फिर तकाबुल करेंगे, पिछले साल ऐसे बताया, इस साल ऐसे बताया, और एक से सुनेंगे फिर दूसरे से सुनेंगे, और तकाबुल करने वालों को हिदायत नहीं मिलती। तो इसीलिए फरमाया जब कि इन लोगों ने कहा कि अल्लाह अगर ये कुरान आपकी तरफ से वाकई है तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा या हम पर कोई दर्दनाक अजाब वाक़े कर दे, और अल्लाह ताला ऐसा न करेगा कि इनमें आपके होते हुए उनको अजाब दे, और अल्लाह इनको अजाब न देगा इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार भी करते हो। आज के हालात में नोट कीजिए, इस्तिग़फ़ार में अमन है, पनाह है। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में मक्का में कोई भी अजाब नासिल नहीं किया, और बाद में लोग जब तक इस्तिग़फ़ार करते रहे, तो कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए ताकि अगर कोई अजाब, कोई फितना, कोई आजमाइश आने वाली हो तो अल्लाह ताला आपको मुझे उससे बचा ले। अब इसके बाद कुछ वो लोग जिन्होंने दीन का बस एक ज़ाहरी रंग रूप देखा था और ढकोसला था असल में उनके लिए दीन, कुछ ऐसी ही कैफियत थी उनकी जिसको अल्लाह ताला यहाँ पेश करते हैं। और इनमें क्या बात है कि इनको अल्लाह ताला सज़ा न दे, हालांकि वो लोग मस्जिद हराम से रोकते हैं। जी, कई लोग मस्जिद में रहते हुए भी लोगों को कुरान से रोकते हैं, जबकि वो लोग इस मस्जिद के मतवली नहीं, इसके मतवली तो सिवाय मुत्तकियों के और लोग नहीं, लेकिन इनमें से अक्सर लोग इल्म नहीं रखते। तो क्या पता चला, मस्जिदें आबाद होती हैं तकवा वालों से, सिर्फ ओहदों के लिए और अपने नामों के लिए लड़ने वाली मस्जिदों में अल्लाह ताला की तरफ से बरकत उठ जाती है। और इनकी नमाज काबा के पास सिर्फ ये थी, सीटियां बजाना और तालियां बजाना, सो अपने कुफर के सबब इस अजाब का मजा चखो। मक्का वाले खुद को कहते तो हजरत इब्राहिम की नस्ल से थे, लेकिन इबादत के रंग ढंग सब बदल लिए। वो सीधी सादी नमाज के जिसमें खुशू भी हो और अल्लाह ताला का कुर्ब भी हो, उसकी बजाय इनकी नमाज सीटियां और तालियों का जरिया बन गई थी। आज भी इसकी एक फॉर्म आपको मिलेगी कवाली की सूरत में। आप देखिए कि म्यूजिक को इबादत में शामिल कर लेना, इस तरह बेपर्दगी हो एक औरत की कि वो अपने सर की चादर को उतार कर फेंक दे जोश में जज्बों में, ये इबादत में रंग अमेजी तो हो सकती है, ये इबादत नहीं है। तो म्यूजिक और कुरान साथ नहीं चल सकता किसी भी सूरत में। और यूर्स में क्या होता है, धमाल, ढोल, डांसिंग, दरवेश, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी सहाबा के बारे में ऐसी हरकतें सोच भी सकते हैं जो आज कुछ लोग, सब नहीं, कुछ लोग कुछ खास नामों के साथ दुनिया में पेश करते हैं। और याद रखिए कि यूथ में, जवान नस्ल में ये दीन बड़ा आम हो रहा है। अल्लाह ताला आपको मुझे खरे और खोटे का फ़र्क अता फरमाए। बिलाशुबा ये काफिर लोग अपने मालों को इसलिए खर्च कर रहे हैं कि अल्लाह की राह से रोकें। ज़रा सा इसको हाईलाइट कीजिएगा। बदर से बचकर जो काफिला वापस गया, सारा डोनेट कर दिया गया कि अब इससे माल जमा करेंगे, हथियार लेंगे और अगले साल वापस जाएंगे मुसलमानों को मज़ा चखाने। उसी का तذکرہ है कि अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने के लिए माल लगा रहे हैं। सो ये लोग तो अपने मालों को खर्च करते ही रहेंगे, फिर वो माल इनके हक में बायस हसरत हो जाएंगे, फिर मغلوب हो जाएंगे और काफिर लोगों को दोजख की तरफ जमा किया जाएगा। क्या किया जाता है, आग में डालकर अलग किया जाता है चीज़ों को, खोट खपट दूर होता है, ताकि अल्लाह ताला नापाक को पाक से अलग कर दे और नापाकों को एक दूसरे से मिला दे, बस इन सब को इकट्ठा कर दे, फिर इन सब को जहन्नुम में डाल दे। ऐसे लोग पूरे खसारे में हैं, यानी जहन्नुम में डंप कर दिया जाएगा उन लोगों को जिनके इरादे, जिनकी सोच इस्लाम से मेल खाती थी और ये मुसलमानों के दुश्मन थे। आप इन काफिरों से कह दीजिए अगर ये लोग बाज आ जाएं तो इनके सारे गुनाह जो पहले हो चुके हैं सब मुआफ़ कर दिए जाएंगे, और अगर अपनी वही आदत रखेंगे तो कुफ्फारे साबिकीन के हक़ में कानून नाफिज हो चुका है। कितनी प्यारी बात है। आप देखिए कि जिस तरह इस्लाम छोड़ते ही सब नेकियां ख़त्म हो जाती है ना, इसी तरह कुफर से इस्लाम में आते ही पिछली ज़िंदगी के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कितनी ख्वाहिश है, दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे जरिए किसी को इस्लाम दे दे, ईमान दे दे, हम भी कुछ दुनिया से अच्छा काम करके जाएं। और याद रखिए कि वो तो अपने माल लगा रहे हैं ये सुद्दुअन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से रोकने पे क्या हम सबीलिल्लाह की तरफ बुलाने के लिए भी माल खर्च करते हैं? आज आप देखिए क्रिश्चियन मिशनरीज ने बस्तियों की बस्तियाँ अपने हम ख्याल बना लिया लोगों को खाने, रोटी, दवाइयाँ दे दे के। इस वक्त भी अगर हम न संभलेंगे तो याद रखिए कि हमारी नस्लें इसकी सजा भुगतेंगी। अल्लाह से दुआ है कि हमारे मकसद बदल दें। तो उम्मत मुस्लिमा का मकसद हयात क्या है? माल कमाना नहीं, बल्कि लिखिए चार चीज़ें। नंबर एक, लोगों को रब से जोड़ना, कलम, नफ्स और माल से जिहाद करना, अल्लाह का दीन नाफिज करना, जिद्दोजहद यहाँ तक करना कि फितना बाकी ना रहे। अब अपने आप से पूछिए क्या मैं इस मकसद के साथ जीने के लिए तैयार हूँ? अगर हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आज के बाद आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको माइग्रेन नहीं होगा, आप बिल्कुल मुतमईन होकर जिएंगे और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक दे। इसके बाद अब आखिरी आयतें हैं पारे की, सुनिएगा और सोचिएगा कि अल्लाह के नबी की जंगों का मकसद क्या था और आज के दौर की जंगों में क्या हो रहा है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकूना फितना, और तुम इनसे इस हद तक लड़ो कि इनमें फसाद अकीदा बाकी ना रहे। यहाँ फितने से मुराद गलत अकीदा है, और दीन अल्लाह ही का हो जाए। फिर अगर ये बास आ जाए तो अल्लाह ताला इनके अमाल को खूब देखता है, और अगर वो मुंह फेर दें, रूगरदानी करें, तो यकीन रखें कि अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज़ है, वो बहुत अच्छा कारसाज़ है और बहुत अच्छा मददगार। वइन तवल्लौ फ़ालमू अन्नल्लाहा मौलाकुम नेमल मौला व नेमन नसीर। इससे मिलती हुई आयत आगे हम सूरह तौबा में भी पढ़ेंगे। तो क्या पता चला कि हमें लोगों को नहीं देखना, अल्लाह को देखना है। तो आयत 17 से 37, 17 to 37 में जो पढ़ा उसको खुलासे में देखिए। दौरान जंग मुसलमानों को हिदायत दी गई, फैसला कुन चीज़ अल्लाह की मदद है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का हुक्म दिया गया, तकवा की बरकत बताई गई, और मुशरिकी ने मक्का के नापाक अजाइम और इनका बुरा अंजाम। उन्होंने नबी को मक्का से निकाला कि जाए, अल्लाह ने मदीना को उनके लिए खैर बना दिया। फिर इसी तरह हमने सूरत अनफाल में जो माल का फितना देखा उसको थोड़ा सा आयतों के साथ रिलेट कीजिएगा। मसलन सूरत अनफाल में 1 से 3 आयतें थी, सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन को माले गनीमत के सिलसिले में हिदायत दी गई कि पहले अपना किरदार अच्छा करो और ज़्यादा इसलाह कर लो, फिर तुम्हें बताया जाएगा। फिर इसी तरह अनफाल 32 में काफिरों का दुनिया में माल खर्च करना आखरत में बेकार होगा, और 40 आयत में मुसलमानों का मकसद हयात माल कमाना नहीं बल्कि फितने के खात्मे तक जिहाद करना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इस काम के लिए बस चुन ले। अपने चुने जाने की दुआएं करें, देखिएगा रंग लग जाएगा आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह। तो पारे के चंद जेम्स लीजिएगा, सुनहरे हरूफ, माल एक फितना और आजमाइश है। इज्जत का मेयार माल नहीं तकवा है। माल कमाने की बजाय मकसद हयात पे नज़र रखनी है। हराम ज़राए आमदनी और हीला साजी से रुकना है, जैसे अस्हाबे सब्त का वाक़या पड़ा था पीछे। सबीलुल गई के ऊपर आने के लिए हर वो चीज़ जो हमारी ज़िंदगी में कशिश पैदा करे उसको छोड़ना है, और सबीलो रुश्त पे रहना है, और अहद अलस को कभी नहीं भूलना, और सब्र और कनात करनी है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन नियतों पे कायम रखे और हम इस पे जो कोशिश करें उस पे अजर दे। आखिर में फितने का हल, फितना क्या था? रुश्त को छोड़कर गई पे आए, और पीछे एक ही चीज़ थी, माल की मोहब्बत। तो चंद प्रैक्टिकल टिप्स लीजिएगा। पहली बात है कि माल अल्लाह की नेमत भी है और फितना भी है। इसकी मोहब्बत में इतदाल में रहना है, अपनी सोच और नीयत को दुरुस्त रखना है, और अपने आमाल पर नज़र रखनी है कि आखिरत बनाने के लिए क्या जमा कर रही हूँ। सबील रुश्त पर रहते हुए हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद और मकसद हयात को नहीं भूलना। सबील रुश्त पर रहते हुए और तवक्कुल अल्लाह करते हुए हलाल तरीक़ों को इख्तियार करना है और हराम तरीक़ों से परहेज़ करनी है। इसी तरह सबील रुश्त पर रहते हुए अल्लाह के दिए हुए रिस्क पर सब्र और कनात से काम लेना है। दीनी इल्म हासिल करना है ताकि सबील गई को पहचान कर इससे बच सके। देखिए, ड्राइवर सिर्फ गाड़ी चलाना नहीं सीखता, रोड मैप्स भी देखता है, रास्तों को भी देखता है। गाड़ी चलानी आती हो, रास्ता ना आता हो, कहाँ पहुँचेंगे? यही है उस शख्स की मिसाल कि जो दीन का इल्म हासिल तो कर लेता है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। इसी तरह सबील रुश्त पर इस्तकामत के साथ रहने की दुआएं मांगनी है, और माल को अल्लाह की राह में और अल्लाह की मखलूक के लिए खर्च करना ही माल की नेमत की शुक्रगुजारी है। जैसे कि आजकल माशाल्लाह बहुत सारे लोग राशन फंड में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और जिस तेज़ी से वो दूसरों में जा रहा है, अक्सर मेरे सामने कुछ कमेंट्स आते हैं, मेरी आंखें भी भीग जाती हैं। कल परसों भी एक ऐसा ही कमेंट था कि किसी ऐसी गरीब फैमिली को जाकर साथी देकर आए, तो उन्होंने कहा कि आज कितने दिन के बाद फ्रूट आया। और इसी तरह की बातें, यकीन कीजिए कि वो खुशी जो किसी गरीब के घर में चूल्हा जलता देख कर हो, वो बड़े से बड़े पिज़्ज़ा हट और KFC में बैठकर खाना खाने से नहीं मिल सकती। अल्लाह ताला हमारी तरजीहात बदल दें। फिर इसी तरह अपने इल्म, काबिलियत, हुनर और तजुर्बे को अल्लाह का फजल समझते हुए आजिज़ बनना, दुनियादारों की सोहबत की बजाय सोहबत सालेहीन हासिल करना है। देखिए, जिनमें बैठेंगे ना वैसा बनने को दिल चाहेगा। सुस्त लोगों में बैठेंगे तो सुस्त हो जाएंगे, एक्टिव लोगों में होंगे तो एक्टिव। माल कमाने वालों के पास बैठेंगे तो लगेगा मेरा मियाँ तो बिल्कुल ही सीधा है, कुछ कमाता ही नहीं है, और इसको तो कुछ होश ही नहीं है, और ये देखो ना वो फलां के पास कितना और कितना। और आप ज़रा दीन वालों के पास बैठिए, नेकियां कमाने वालों के पास बैठिए, हज नमाज रोज़े करने वालों के पास बैठिए, आपको अपनी नेकियां थोड़ी लगेंगी, आप शर्मिंदा होंगे, आपको लगेगा कि मैं तो बहुत ही मुफलिस हूँ और असल में तो अल्लाह ने दौलत इनको दी है। तो क्या चाहिए कि अपनी सोहबत को बदलना है, और अपने घर वालों में किसी की भी अगर आप हालत बदलना चाहते हैं तो उसको अच्छे लोगों की सोहबत में बिठाएं। और अल्लाह की इज्जत और निजात का दारोमदार माल पर नहीं बल्कि साले आमाल, तकवा और ईमान पर है। अल्लाह ताला आपको मुझे सबील और रुश्त पर जमा दे। तो यहाँ पे पारा नंबर 9 पूरा हुआ। अल्लाह ताला एक एक लफ्ज़ को कबूल करे, गलतियों की इसलाह फरमाए और हमें माफ़ फरमाए। रब्बना तकबल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह तू हमसे ये कबूल फरमा और तू ही सुनने वाला है। या अल्लाह जो साथी इस वक्त दिल में जो ख्वाहिश तमन्ना लिए बैठे हैं, या अल्लाह उसको अच्छी बना के इनके हक में कबूल फरमा, और अगर कोई चीज़ इनके हक में बेहतर नहीं तो या अल्लाह इनको उसको अच्छे तरीके से मांगने वाला बना दे। जिस बात पे सूरत अनफाल पूरी होती है उसी के ऊपर सूरत अनफाल की अगली आयतें 10वें पारे में शुरू होती हैं। तो आइए देखते हैं कि 10वां पारा, जिसका नाम है वालमू, और जान लो और इल्म हासिल करो। मुझे इस पारे का नाम बहुत पसंद है। 30 पारों में से पसंदीदा नामों में से एक नाम ये भी है, इल्म की अहमियत। और हकीकत है कि जितना इल्म के साथ आगे चलेंगे उतनी जिंदगी भी खूबसूरत होगी। इस पारे का मरकजी ख्याल या मौजू या थीम कराहियतुल मौत है, मौत का डर। और ये कब पैदा होता है? जब इससे पहले हुब्बे दुनिया आती है। अल्लाह के नबी की एक हदीस भी है जो इंशाल्लाह अभी कोट करेंगे आपको, उसकी रोशनी में आप मैं इस पारे में से जो जेम्स लेंगे, और आप हैरतनाक हद तक हैरान होंगे कि इस पारे में ये बात कहाँ छुपी हुई है कि जब मुसलमान भी मौत से प्यार करने की बजाय मौत से डरने लगे, तो याद रखिए ये चीज़ फितना बनती है। कोई माने कि ना माने, कोई समझे कि ना समझे, लेकिन आज के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा मसला क्या है कि इनको मरना नहीं है। सहाबा ख्वाब देखते थे, कभी अब सहाबा कराम के वो ख्वाब देखा करें कि जो वो मैदाने जंग में जाने से पहले देखते थे। मिल मिला के जाते थे, अल्लाह से दुआएं मांग के जाते थे, अल्लाह मैं इस हाल में जाऊं कि मेरे जिस्म की एक एक बोटी चली जाए। उनको आगे जाना था, हमें इधर रहना है क्योंकि हमारा सामान इधर है, उनका सामान उधर था। किसी ने एक नेक शख्स से कहा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, कोई ऐसा तरीका बताओ कि मेरा डर निकल जाए, यानी जैसे फोबिया होता है। कहने लगा, जो तेरी पसंदीदा चीज़ है इसको आगे भेज दे। तो जहाँ बंदे की चीज़ें होती हैं, जहाँ उसका सामान होता है ना, दिल उधर लगता है। जब तेरा सामान आगे पहुँच जाएगा ना, तो तेरा वहाँ जाने को दिल करेगा। बिल्कुल अबू जर को ये बात समझ आ चुकी थी, इसीलिए तो जब कोई उनके घर जाता है और सामान ही नहीं दिखा तो पूछा सामान किधर, कहा कि वो दूसरे घर रखा हुआ है। कहा अच्छा, इनके भी हमारी तरह कोई 2-3 घर होंगे खैर से। कहा अच्छा, कुछ इधर भी रख लेते। कहा यहाँ का मालिक रखने नहीं देता, वो इधर रहने जो नहीं दे रहा। फिर उनको समझ आई कि वो दूसरा घर आखिरत का है। तो याद रखिए, जब मुसलमान का दिल दुनिया में खुब जाता है, खुबने का लफ्ज़ जान के बोला, जब दिल में पेनिट्रेट हो जाती है दुनिया की मोहब्बत, गोडे गोडे दुनिया दुनिया दुनिया, तो मौत से कराहत तो होगी। और इस बारे में हम इसको इंशाल्लाह देखेंगे कि मौत का डर निकालना है, फिर मुसलमान जिएगा, फिर जिहाद होगा। और इस बारे में बहुत ज़्यादा जिहाद की बात है जिस पे आज के मुसलमान बड़े शर्मिंदा होते हैं। आपको इंशाल्लाह सूरत अनफाल का ये बाकी हिस्सा और तौबा पढ़ते हुए ये तो यकीन हो जाएगा कि आज के दौर की जंगें ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा इंसानियत सोच हैं, और अल्लाह के नबी के दौर के मामला क्या थे। फिर आप देखिए कि इसमें आपको एक और चीज़ समझ आती है, और वो क्या है कि ये कराहियतुल मौत, यानी मौत से जो कराहत का फितना आया, इसने मुसलमानों को किधर डाल दिया। क्या हालात हो गए कि वो दुनिया में उस बड़े मकसद को भूल गए जिसके लिए अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया था। और हकीकत है कि इंसान जब मकसद को भूल जाता है तो उसकी ज़िंदगी खसो खाशाक की ज़िंदगी हो जाती है। फिर इसमें हम एक बहुत ही खूबसूरत आयत पढ़ने वाले हैं, लई युसी बना इल्ला मा कतब अल्लाह, सूरह तौबा की आयत 51, कि हमें वो पहुंच ही नहीं सकता जो अल्लाह ने हमारे नसीब में ना लिखा हो। तकदीर पर ईमान हम पढ़ने वाले हैं इस बारे में इंशाल्लाह ताला। फिर इसमें हम आजमाइशों की हकीकत देखेंगे कि आजमाइशें कब कैसे आती हैं, और ख़ास तौर पे इस पूरे पारे में भी गज़वे बदर से लेके तबूक तक के हालात हैं, बीच में हुनैन का जिक्र है। अल्लाह के नबी के सहाबा ने जंगें लड़ी फिर भी खुश थे, हम घर बैठे हौल रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। इसमें भी बहुत सारी किरदार साजी की बातें हैं, और ख़ास तौर पे फिर कराहियतुल मौत, मौत से कराहत का फितना जब दिलों में आता है ना, तो फिर दुश्मन तेज़ होते हैं। फिर उनकी कैफियत क्या होती है, लियुत्फियु नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम। इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि वो तो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूकों से बुझा दें, यानी फिर इस्लाम के बारे में बातें होती हैं, इस्लाम को मिस अंडरस्टूड किया जाता है। मरकजी ख्याल जो थीम आयत है वो सूरत तौबा की आयत नंबर 38-38 है, इसको अपने दिल पे लीजिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, मालकुम, तुम्हें क्या है, इज़ा क़ीला लकुम, जब तुमसे कहा जाता है। अब इसके बाद इंसान का शऊर बेदार होता है, ये मुझे बुलाया किसी ने, क्या कहा था? अल्लाह करे मालकुम, क्या हो गया तुम्हें, अकल करो, होश करो, समझ करो। अब बंदा ज़रा सौर कॉन्शियस होता है तो कहते हैं ये बात क्या कहने लगे। जैसे आप देखते हैं घर में बाप माँ कोई भी बड़ा एकदम ये टोन इख्तियार करे तो हम फौरन जहन में सोचने लगते हैं, मैंने गड़बड़ क्या की है, ये अम्मी की बोल रही हैं, ये शौहर को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, इज़ाक़ील लकुम उन्फिरू फी सबीलिल्लाह, जब तुम्हें कहा जाता है अल्लाह के रास्ते में निकलो, वो किसी किस्म का भी निकलना हो, आप अपने ऊपर लेकर सोच लीजिए, जिस मामले में भी अल्लाह का रास्ता हो, सअक्लतु मिनल अर्दी, बोझल हो जाते हो तुम जमीन के साथ, मन मन का तुम्हारा एक पाँव हो जाते हैं, तुम्हारे पाँव भारी हो जाते हैं, ये जमीन तुम्हें बांध लेती है, खींच लेती है। इतनी कशिशें शक्ल तो उसमें नहीं थी, ये किस चीज़ की मोहब्बत ने बांधा। वो है आ गया रदी तुम बिल हयात दुनिया, क्या तुम दुनिया की जिंदगी से राजी हो गए हो, मिनल आखिरत आखिरत को छोड़कर। तो सुन लो फमा मताउल हयात दुनिया फिल आखिरती इल्ला कलील, तो फिर दुनिया का सामान आखिरत में जाकर बड़ा थोड़ा ही निकलेगा। तो आपको आयत का अंदाज बता रहा है कि ये क्या होगी, जहाँ ये आएगी आप और मैं इसको पढ़ेंगे, कि जब सिर्फ दुनिया और हमारी खुशी और हमारा गम और हमारी कोशिशों का और हमारी तिजारतों का सबसे बड़ा हासिल माल माल दुनिया पड़े, तो फिर अल्लाह के रस्तों के तकाजे बुरे लगते हैं। आप देख लीजिए जॉब्स क्यों करते हैं हम, कारोबार की तरफ सारा वक्त क्यों है, नमाजें क्यों कजा होती हैं, जुमे के दिन भी जॉब हो रही है, जुमे की नमाज छूट रही, और अदी तुम बिल हयात दुनिया। तो मुसलमानों को तो ये अच्छा नहीं लगता। तो दुआ मांग के शुरू करते हैं पारा, के अल्लाह हमारे दिलों से इस दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। अल्लाहुम्मा जल हुब्बका हब्बल अशियाई इलैया वजल खौफका खौफल अशियाई इलैया वक्तानी हाजात दुनिया। इस जुमले को आपने हाईलाइट करना है दुआ के दौरान। बिशौकी ला लिखाइक वैसा अकररता युनन अहले दुनिया मिन दुनियाहुम फ़क्रैनी मिन इबादतिक। ए अल्लाह अपनी मोहब्बत को मेरे लिए हर चीज़ की मोहब्बत से बढ़ा दे। बोलिए आमीन। मुझ में अपना खौफ हर चीज़ के खौफ से ज़्यादा कर दे। आमीन। दुनिया की हर तलब पर अपनी मुलाकात का शौक़ गालिब कर दे, और जब तो दुनिया वालों को इनकी दुनिया से ठंडक दे, तो मेरी आंखों की ठंडक अपनी इबादत में रख। दिल से ही आमीन कहिए, ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और जो हमारा थीम है उससे मुतल्लिक हदीस देख लीजिए, सिलसिलातुल अहदीस है सहीहा नसरुद्दीन अलबानी की, 958 हदीस है। आपने फरमाया कि अन करीब उम्मतों के लोग तुम पर यूं टूट पड़ेंगे जैसे भूखा खाने के प्याले पर टूट पड़ता है। कहने वाले ने कहा, क्या हम उस वक्त तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया, तुम्हारी बहुत ज्यादा तादाद होगी, लेकिन तुम सैलाब के कूड़ा करकट की तरह हल्के फुल्के और बेवक़्त हो जाओगे। कभी बारिश के बाद का पानी खड़ा हुआ देखा ना, तो तिनके और शॉपर गंद कूड़ा करकट बेकीमत बेवक़्त। और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारी हैबत निकाल देगा, यानी लोग डरना तो छोड़िए मजाक करेंगे मुसलमानों का, और तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। कहने वाले ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहन क्या होता है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहियत को वहन कहते हैं। तो ये है कराहियतुल मौत। जब मुसलमान भी जीने पे इतने ही हरीस हो जितना नॉन मुस्लिम है, उसने भी इंश्योरेंस कराई हुई, इसने भी कराई हुई, उसको भी खौफ है मर ना जाऊं। आप देखिए आज कितना लाइफ सेवर पे बात होती है, कभी आपने मैंने अपनी रूह को सेव करने के लिए भी इतनी कोशिशें की। तो पारे की हाइलाइट्स देखेंगे, अल्लाह ताला के हर हुक्म को मानना है, अल्लाह ताला पर भरोसा करना है, अल्लाह के दुश्मनों के मुकाबले में हर तरह की कुव्वत फराहम करना है, साबित कदमी इख्तियार करना सीखेंगे, ईमान लाकर हिजरत और जिहाद करना, अल्लाह वालों को पनाह देना और अल्लाह वालों की मदद करना सीखेंगे, और अल्लाह ताला से तौबा करना और तकवा की ज़िंदगी गुजारना सीखेंगे। इतने बड़े बड़े काम करने हैं इंशाअल्लाह ताला हमने इस बारे को पढ़ने के बाद। और इसी तरह अल्लाह ताला को अपनी पहली तरजीह पे रखना, दीन हक की इताअत करना और अल्लाह ताला का तकवा इख्तियार करना, और इसी तरह अपने मालों और जानों के साथ जिहाद करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना, अल्लाह की राह में खर्च करना, और ईमान वालों के लिए बायस रहमत बनना सीखेंगे। निफाक से बचना है, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, और अल्लाह और उसके रसूल का खैर ख्वाह रहना है। अल्लाह ताला हमें इन सारे कामों पे मदद दे कि हम सब ये काम अच्छे तरीके से कर सके। तो आइए देखते हैं सूरत अनफाल की आयत नंबर 41 से, पीछे सवाल शुरू में था यसलुने का अनिल अनफाल, अब यहाँ उसका जवाब है। वालमु अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल। और जान लो कि तुम जिस किस्म की जो कुछ गनीमत हासिल करो, इसमें से पांचवा हिस्सा तो अल्लाह का है और रसूल का और खराबत दारों का और यतीमों का और मिसकीनों का और मुसाफिरों का। अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो और इस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे पर उस दिन उतारा है, मुराद है बदर का दिन, जो दिन हक और बातिल की जुदाई का दिन था, जिस दिन दो फौजें भिड़ गई थीं और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। जबकि तुम पास वाले किनारे पर थे और वो दूर वाले किनारे पर थे और काफ़िला तुम से नीचे था, अगर तुम आपस में वादे करते तो यकीनन तुम वक्ते मुय्यन पर पहुंचने में मुख्तलिफ हो जाते, यानी तुम्हारी राय मुख्तलिफ हो जाती कि जाएं कि ना जाएं। लेकिन अल्लाह को तो एक काम कर ही डालना था जो मुकर्रर हो चुका था, ताकि जो हलाक हो दलील पर, यानी यकीन जानकर हलाक हो, और जो जिंदा रहे वो भी दलील पर, यानी हक को पहचान कर जिंदा रहे। बेशक अल्लाह ताला बहुत सुनने वाला बहुत जानने वाला है। क्या पता चला गज़वे बदर में हक और बातिल जुदा हो गया। आज मैं और आप अपने आप से पूछें, क्या मेरे जिंदा रहने की कोई दलील है? क्या वजह है? अगर मैं दुनिया से चली गई तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा? तो याद रखिए कि आज के दौर में जीने की एक बहुत बड़ी दलील है कि इस्लाम की गिरती इमारत को सहारा देने वाले बन जाएं। आज इस्लाम ठोकरों में है, लोग इस इस्लाम और इसके मानने वालों को किस तरीके से गाजर मूली समझ रहे हैं। तो आपने मैंने आज अल्लाह से एक दुआ करनी है कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी बन जाए। अब वहाँ दुश्मनों के साथ जो मामला था, अल्लाह ताला उसको खोलते हैं, आयत 43। जबकि अल्लाह ताला ने तुझे तेरे ख्वाब में इनकी तादाद कम दिखाई, अगर इनकी ज्यादती दिखाता तो तुम बुज़दिल हो जाते और इस काम के बारे में आपस में इख्तलाफ करते, लेकिन अल्लाह ताला ने बचा लिया, वो दिलों के भेदों से खूब वाकिफ है। यानी कुफार थोड़े थे कि ज्यादा थे, अल्लाह ताला ने उनकी ईमानी कैफियत दिखा दी। क्योंकि जब मुसलमान को दुश्मन बहुत ज्यादा दिखता है तो फिर इंसान की हिम्मत टूटती है। और साथ ही साथ ये बता दिया कि हेड काउंट से निकल आओ, ज्यादा तादाद के काफिर मुसलमान उन पर गालिब आ जाते हैं, थोड़े से मुसलमान जिनके ईमान दिलों में भरे हुए थे। और दूसरी बात यहाँ बताया कि हेड काउंट ना करो, कितने थे, थोड़े थे, बहुत थे। आज हमारा भी ये हाल है, कितने थे मस्जिद में, कितने लोग आए, अच्छा खाली होगी मस्जिदें, अच्छा दर्स में कितने आए, अच्छा बहुत आ रहे हैं, फिर हम भी चलेंगे, अच्छा ही होगा। याद रखिए, दो जुमले लिख लीजिए, शुरू के लोग हक के लिए आते हैं, बात वाले लोग कामयाबियों को देख कर आते हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हक को देख कर आने वाले बनाए, क्योंकि हक को देख कर आने वाले जम जाते हैं मेखों की तरह, ठुक जाते हैं, फिर ज़िंदगी खपा देते हैं। और जो रौनक मेला समझ कर और शोहरतें देख कर आते हैं ना, फिर वो चले भी जाते हैं। साहबा ने जाने दी, उस वक्त अल्लाह के नबी के साथ ना बदर की फतूहात थी और ना तबूक के मरके थे। बिलाल ने जो पत्थरों पर लेटना कबूल किया, वो कोई शोहरतों को और फ़ायदों को नहीं, उस वक्त तो तकलीफ़ें थी। शुरू के लोग मेहनत कर जाते हैं, बाद वाले सिर्फ उनके जिक्र सुनते रह जाते हैं। तो हमें ये शक है कि अल्लाह हक पे खड़ा रहूं और हक के अंदर रहूं। और फिर अल्लाह की सुन्नत क्या है कि अगर इनकी ज्यादती दिखाता तो बुज़दिल होता, ये भी इंसान की कमजोरी है। तो अल्लाह ताला तो दिलों को भी जानता है। जबकि इसने बवक्ते मुलाकात इन्हें तुम्हारी निगाहों में बहुत कम दिखाया और तुम्हें इनकी निगाहों में बहुत कम दिखाया, ताकि अल्लाह ताला इस काम को अंजाम तक पहुंचा दे जो करना ही था, और सब काम अल्लाह ही की तरफ फेरे जाते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं सूरत बकरा में कि ये हेड काउंट क्या था। इस वक्त मकसद पे नज़र दिलाई जा रही है कि देखो तो सही होता क्या। आयत नंबर 45 से ऑनवर्ड आप देखेंगे तकरीबन 49 तक का एक टॉपिक, हर मैदान में कामयाबी के असूल। 5 चीज़ें आपने नोट करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, जब तुम किसी मुखालिफ फौज से भिड़ जाओ तो साबित कदम रहो और बकसरत अल्लाह की याद करो, ताकि तुम्हें कामयाबी हासिल हो, और अल्लाह की और इसके रसूल की फरमा बरदारी करते रहो। आपस में इख्तलाफ न करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, और सब्रो सहार रखो, यकीनन अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा क्या करना है, अब आगे बताया जा रहा है क्या नहीं करना। उन लोगों जैसे रंग ढंग इख्तियार न करो, यानी इन लोगों जैसे न बनो जो इतराते हुए और लोगों में खुद नुमाई करते हुए अपने घरों से चले और अल्लाह की राह से रोकते थे। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह ताला उसे घेर लेने वाला है। दुश्मनों का जो लश्कर था वो खूब पंप एंड शो दिखाता हुआ आया, उसी की तरफ इशारा है। और इसी में लफ्ज़ जो बतर आया, यह हमने 2010 के दौरे कुरान में पूरा पारा सिर्फ इस एक लफ्ज़ पे किया था, क्योंकि उस साल तज़किया नफ्स का एक टॉपिक था, और आज इसी पे दीन और दुनिया नाम की एक बुक भी है। अल्लाह करे कि हम इन सारी चीज़ों से पहली फुर्सत में फ़ायदा उठा लें। जितना वक्त दे सकते हैं देंगे, उतनी खैर अल्लाह ताला आपको मुझे देगा। फिर शैतान के कुछ करतूत, उसके कुछ वार, आयत 48 में, वही जय्यन लहुम शैतान व अमालहुम, जबकि इनके अमाल को शैतान इन्हें जीनादार बनाकर दिखा रहा था और कह रहा था कि लोगों में से कोई भी आज तुम पर गालिब नहीं आ सकता, मैं खुद भी तुम्हारा हिमायती हूँ। लेकिन जब दोनों जमातें नमूदार हुईं तो अपनी एड़ियों के बल पीछे हट गया और कहने लगा, मैं तुमसे बेजार हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख रहे। फरिश्तों की तरफ इशारा है, मैं अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह ताला सख्त अजाब वाला है। जरा सा रुकिएगा और सोचिएगा, अल्लाह ताला ने कहा बतर ना करो, दिखावा ना करो, रियाकारी ना करो, पीछे मैदाने जंग में कामयाबी की चीज़ें बता दी। फैसला करो तो जम जाओ, जिक्र अल्लाह का करो, नजरें अल्लाह पे लगाओ, शो ऑफ ना करो। और अब आखिर में देखिए शैतान का जुमला, इन्नी अखाफ अल्लाह, इसे डर था मगर डर से आगे बढ़ के अमल ना कर सका। इस जुमले को नोट कीजिए, अल्लाह का डर भी वही प्यारा है जो आपको अमल पे मायल करे। किसी मतवक्के खतरे के मौके पे अगर आप इस्लाम के किसी भी हुक्म से पीछे हो जाते हैं ना, तो कह लीजिए कि वो सिर्फ जुबानी खौफ है, बस आपको आवाज़ आ रही है, बाहर कुछ हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, आप डरते ही जाए, हाय कोई आ गया, चोर आ गया, ये हो गया, बाद में पता चला बिल्ली है। उठिए और देख लीजिए दरवाज़ा, पर्दा हटाकर देख लीजिए, पीछे कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से इधर भी यही बात है। तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ को बताया। अब देखिएगा कि जिहाद में कामयाबी के असूल क्या हैं, कुछ डूज एंड कुछ डोंट्स। बस अल्लाह का जिक्र, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत, आपस का इत्तेहाद और सब्र, ये काम कर लीजिए। जो नहीं करना, नंबर एक झगड़ा, दूसरी बात कमज़ोरी नहीं दिखानी और बतर नहीं करना। बस इसको अपने एजेंडे में लिख लीजिए, दुनिया के हर मैदान में अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। याद रखिए, जहाँ जंगें और जंगों के हालात आएंगे, वहाँ मुनाफिकीन के पोल ज़रूर खोलेंगे, बल्कि कह दीजिए कि जंगें होती ही इसलिए हैं। और आज के दौर में कह लीजिए कि दीन के प्रोजेक्ट्स और दीन की बातें आती सामने इसलिए हैं कि आप देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है और कौन पीछे होता है। कुछ लोगों को तो बैक गियर लग जाता है नेकी की कोई बात सुनकर या किसी भी काम को करने का, अगर कोई कह दे तो वो मुश्किल में पड़ते हैं। अब इस पूरे बारे में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कराहियतुल मौत का शिकार थे। नाम इस्लाम का था लेकिन अंदर निफाक भरा हुआ था। कैसे? इस यकूलुल मुनाफिकून, जबकि मुनाफिक कह रहे थे और वो भी जिनके दिलों में रोक था कि इन्हें तो इनके दीन ने धोखे में डाल दिया है। जो भी अल्लाह पर भरोसा करे, अल्लाह तआला बिला शक व शुबा गलबे वाला और हिकमत वाला है। ये धोखा क्या जी, ये दीन ने इनको खपती बना दिया है, ये फलां, ये ऐसे, ये वैसे। आज भी जरा सा कोई दीन के साथ संजीदा हो जाए, एक्स्ट्रा टाइम दे दे, कोई दीन के किसी हुक्म पे अमल कर ले, कोई हाल हुलिया बदल ले, लोग ऐसी ही बातें करते हुए दिखते हैं। तो आप भी कहिए कि कोई बात नहीं, ये बातें थी, हैं और रहेंगी, हमने तो जो करना है वो अल्लाह के लिए करना है और अल्लाह ताला से उसकी जजा लेनी है। फिर आयत नंबर 50 में देखिएगा, कुछ मौत की घड़ियां हैं। वलौ तराइज यतवफ्फल्लज़ी न कफरू, काश के तू देखता जबकि फरिश्ते काफिरों की रूह कब्ज करते हैं, इनके मुंह पर और पीठों पर मार मारते हैं और कहते हैं कि तुम जलने का अजाब चखो। ये बस अब इन कामों के जो तुम्हारे हाथों ने पहले ही भेज रखा था। बिला शुबा अल्लाह ताला अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। हम में से कोई भी अपनी एक्सपायरी डेट देकर नहीं आया, हमें नहीं पता क्या है, किसी वक्त फरिश्ता आएगा और ले जाएगा, और अल्लाह ना करे ऐसी बुरी मौत हो जिसका आयत में जिक्र है। मिसल फिरौनियों के हाल के और इनसे अगलों के, कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफर किया, बस अल्लाह ने इनके गुनाहों के बायस इनको पकड़ लिया। अल्लाह ताला यकीनन कुव्वत वाला और सख्त अजाब वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह ऐसा नहीं है कि किसी कौम पर कोई नेमत इनाम फरमा कर फिर बदल दे, जब तक कि वो खुद अपनी इस हालत को ना बदल दें जो कि इनकी अपनी थी। और ये कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। कोई शेर याद आया आपको इस आयत पे? इस पे भी आएगा और आगे भी एक आयत आएगी गालिबन सूरत रात में जी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। इसको नोट कीजिएगा। आप कहते हैं मुसलमानों के हालात कैसे हैं, बड़े खराब हालात हैं, मैं कहती हूँ उनकी हालत खराब है। देखिएगा कैसे, अगर कोई पूछे कि आज मुसलमानों के हालात कैसे हैं तो उम्मत का जवाल है, साफ दिख रहा है। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं जिसको हम छुपा लें चले, जिनको नहीं पता उनको ना ही पता चले, ये तो ग्लोब के ऊपर नक्शे पे लिखा हुआ है। बच्चा बच्चा जानता है कि आज मुसलमान दुनिया में क्या है। तो जरा ये देखिए, फिर हालतें भी देख लें, हालात हालत के मुकल्लफ होते हैं। आज मुसलमानों में हुब्बुद दुनिया आ गई, कराहियतुल मौत आ गई, ईमान और जिद्दोजहद की कमी आ गई, गुनाहों की कसरत और अल्लाह की नाराजगी के काम आम हो गए तो क्या फिर अल्लाह की पकड़ ना आएगी। इन दिनों में रो रो के दुआएं करें कि अल्लाह इस वक्त तो तूने मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फ़र्क भी मिटा दिया। कोरोना वायरस के लिए मुस्लिम और नॉन मुस्लिम लफ्ज़ कोई मानी नहीं रखता, क्योंकि जब अमल जो एक जैसे हैं तो फिर नामों से फ़र्क क्या पड़ता है। तो यकीन कीजिए, जितना ज़्यादा इस वक्त अपने ऊपर फिक्र करते हुए गौर व फिक्र के साथ दुआएं मांग लीजिए कि अल्लाह हमारी हालत बदल दें, देखिएगा जितनी जल्दी हालत बदलेगी उतने हालात बदलेंगे। तो 41 से 53 में क्या सीखा? माले गनीमत की तकसीम का हुक्म सीखा। बदर का मार्का अल्लाह ताला की तरफ से था, यानी अल्लाह के नबी का कोई अपना फैसला नहीं था। दौराने जंग मुसलमानों के लिए हिदायत देखी। शैतान की धोखादही के ऐन मैदान में भाग गया, क्यामत के दिन भी देखिएगा भाग जाएगा, हम सूरत इब्राहिम में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मुनाफिकाना तर्ज अमल को देखा। अल्लाह करे कि ये सिर्फ हमारी कॉपियों ने ना लिखा हो या हमारे दिलों ने भी लिखा हो। अब बदर के कैदियों को एक कुएं में फेंका गया, पानी में गए तो उसी की निस्बत के साथ एक और शख्स जिसको मरने के बाद पानी ने भी कबूल ना किया उसकी तरफ इशारा है। फरमाया, मिसल हालत फिरौनियों के और इनसे पहले के लोगों के, कि उन्होंने अपने रब की बातें झुटलाईं, बस इनके गुनाहों के बायस हमने इनको बर्बाद किया और फिरौनियों को डबो दिया, ये सारे जालिम थे। अल्लाह अकबर। बस अब इंसान सोचता है कि एकदम आयत यहाँ क्यों आ गई, तो मैंने रब ताप को जोड़ने की कोशिश की कि वो भी पानी में गए और ये भी पानी में गए और कुफर थे। और एक और वजह भी है कि अल्लाह के नबी ने अबू जहल के लिए भी यही जुमला बोला था, क्योंकि वो भी इसी जंग में मारा गया और काफिरों की कमर टूट गई थी अबू जहल के मरते ही। आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है, और वो भी देखिए पानी में गया और ये भी पानी में गए। और कुफर अल्लाह को इतना बुरा लगता है कि फरमाया, इन्ना शर्रद्दवाबिन्दल्लाहिल्लज़ीना कफरू, तमाम जानदारों से बदतर अल्लाह के नज़दीक वो हैं जो कुफर करें फिर वो ईमान न लाएं। कुछ लोगों को सख्त लगती हैं ये आयतें, लेकिन अल्लाह बादशाह, उसका फैसला उसके बंदे। जितना अल्लाह से प्यार आता जाएगा आपको इस आयत की समझ आती जाएगी। जिनसे तुमने अहद कर लिया फिर भी वो अपने अहद को हर मरतबा तोड़ देते हैं और बिल्कुल परहेज नहीं करते, फिर जब कभी तो लड़ाई में इन पर गालिब आ जाए तो इन्हें ऐसी मार मार के इनके पिछले भी भाग खड़े हों, हो सकता है कि वो इबरत हासिल करें। तो यहाँ देखिए, शर्रत दबाव किसको कहा? क्रिएचर कहते हैं दबाव को, चलने वाला। हर दबीब कहते हैं सॉफ्टली चलना, तो ये जो छोटे छोटे रेंगने वाले कीड़े मकोड़े हैं ना, उसकी तरफ इशारा है। ये कौन लोग होते हैं जो अल्लाह से ना डरे? अहद को तोड़ने वाले और इसी तरह हक को ना मानने वाले। और अब आगे अल्लाह के नबी को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करना अल्लाह ताला सिखा रहे हैं। और अगर तुझे किसी कौम की खयानत का डर हो तो बराबरी की हालत में इनका अहदनामा तोड़ दे। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। क्या पता चला कि मुस्लिम माशरे में खारजा पॉलिसी क्या होगी? अल्लाह ताला उसकी तरफ इशारे दे रहे हैं इसमें। काफिर ये ख्याल ना करें कि वो भाग निकले, यकीनन वो आजिज़ नहीं कर सकते। तुम इनके मुकाबले के लिए अपनी ताकतवर कुव्वत की तैयारी करो। नोट कीजिए, मुसलमान होने का मतलब बेवकूफ़ होना नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह। कि नहीं, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते और आपके साथ तो ये मामला नहीं, और वो और दिस एंड दैट, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा। बल्कि मुसलमान हर तरह की तैयारी करेगा, और घोड़ों के तैयार रखने की, इससे कि तुम अल्लाह के दुश्मनों को खौफजदा रख सको और इनके सिवा औरों को भी, जिन्हें तुम नहीं जानते, अल्लाह इन्हें खूब जान रहा है। जो कुछ भी अल्लाह की राह में सर्फ करोगे वो तुम्हें पूरा पूरा दिया जाएगा और तुम्हारा हक मारा ना जाएगा। कुछ देने की नीयत कर लें, चाहे कोई पसंदीदा आदत छोड़ दीजिए जो अल्लाह को नहीं पसंद, चाहे कोई 5-10 रुपये डालने की नीयत कर लीजिए, फिर ही फायदा होगा। देखिए, पढ़ते हुए अमल की नियतें करते जाएंगे ना, तो अल्लाह की रहमतें उतरती जाएंगी आपके ऊपर इंशाल्लाह। अगर वो सुलह की तरफ झुके हैं तो तू भी सुलह की तरफ झुक जा, और अल्लाह पर भरोसा रखिए, यकीनन वो सुनने जानने वाला है। देखिए, रिस्क लिया जा रहा है, दुश्मन के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उनको मौका दिया जा रहा है। क्या हो, समझ लो, पढ़ लो, सुन लो, जान लो। ये है असल में इस्लाम की खूबसूरती कि हम सोचते नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं कि वो अपने आप को बिल्कुल एक साइड पे करके कहते हैं कि छोड़ो, हम क्यों किसी के अंदर बुरा बने, और सबको ही पता है। कहा नहीं, क्या करो, अगर वो तुझसे दगाबाजी करना चाहेंगे तो अल्लाह तुझे काफ़ी है, इसी ने अपनी मदद से मोमिनों से तेरी ताईद की। याद रखिए, इतना ट्रस्ट और इतना यकीन उसको होगा जिसके दिल में कराहियतुल मौत नहीं होगी। हम छोटी छोटी बातों पे पीछे होते हैं। मसलन आप देखिए कि बच्चा जाकर किसी से अल्लाह की बात कर दे, ना 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 ऐसा ना करना, फिर लोग ये कहेंगे ये मुस्लिम बच्चा है। यानी एक बच्चे ने मुझसे ये सवाल किया, मैं हैरान रह गई। ऐसे ही था, 6-7 साल का बच्चा, कहने लगा कि मेरे स्कूल में एक बच्चा चाइनीज है, तो मैं उसको इस्लाम की बातें बताता हूँ, बड़े शौक से सुनता है, तो मेरी मम्मी मुझे मना करती हैं। यहाँ इस बात को याद कर लीजिए, अगर आप भी कोई इसी किस्म की माँ हैं। मैंने उनकी माँ से कह सकती नहीं, फिर आपको पता है ना आजकल क्या हो रहा है। अल्लाह अकबर, ये किन हालात से हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, आप उसी चीज़ से रोक रहे हैं। हाँ, फिर मैंने उस बच्चे से कहा, बेटा आपने ये बात करनी है, ये नहीं करनी, अल्लाह की बात करें, छोटी छोटी बातें, तो ये तो इंसान का हक है। आप ना इस्लाम की बात करें, आप दूसरी बातों पे क्यों जाते हैं? लेकिन याद रखिए कि इस्लाम जिस चीज़ को पसंद नहीं करता वो यही है। और आज मुसलमानों में कराहियतुल मौत इतनी है, कैसी को बात कर दी तो कोई हमें मार ही ना दे, तो कुल्लु नफ्सिन ज़ायकतुल मौत, मौत तो आके रहेगी। इसी तरह 54 से 62 में जो पढ़ा उसको दोहराइए, दुश्मन की तरफ से सुलह की पेशकश कबूल की जाए, ये इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम सुलह पसंदी है ना, शुक्रियों से नेमत छिन जाती है। याद करें जरा, चंद सेकंड के लिए रिलैक्स रहो, मैंने किसी नेमत की ना शुक्री तो नहीं की जो मुझसे छिन गई। अहद याफ्ता फरीक के खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, जंग के लिए भरपूर तैयारी का हुक्म देखा, और अल्लाह ताला की आयात से इनकार करने वालों की अहद शिकनी की बात पढ़ी। क्या बता दिया अल्लाह ताला ने इसमें, कि तुम जो लोग वादे कर करके भी तोड़ते हैं, अगर उनमें भी हल्की सी खैर की खुद देखो तो उनको भी दावत दो और बुलाओ, और अगर ऐसा नहीं तो फिर देख लो अल्लाह तो काफ़ी है। और आगे है वो आयत जो दीन के साथ जोड़ने वाली और दीनदारों के साथ जोड़ने वाली, सहाबा की आपस की मोहब्बतों की बात है। वल्लफ़ा बैन क़ुलूबिहिम, इनके दिलों में बाहमी उल्फत भी इसी ने डाली। ज़मीन में जो कुछ है अगर तू सारे का सारा भी खर्च कर डालता तो भी इनके दिल आपस में ना मिला सकता, ये तो अल्लाह ही ने इनमें उल्फत डाल दी, वो गालिब हिकमतों वाला है। क्या पता चला, उल्फत अल्लाह डालते हैं। आप देखिए कि सहाबा कराम के दिलों में जो मोहब्बत थी ना एक दूसरे के लिए, उसका जिक्र है। दीन का काम बाहमी उल्फत के बगैर हो नहीं सकता। आप एक डेस्क पे दो लोग बैठ नहीं सकते अगर आपस में मोहब्बत ना हो, एक छत के नीचे शौहर बीवी नहीं जी सकते। अगर आप देखिए कि कभी कभार जो मिलता है आप उससे तो हमेशा बड़े खुश रहते हैं, लेकिन अमूमन दिल खराब होते हैं तो साथ रहने वालों से होते हैं, दोस्तों से कम रिश्तेदारों से ज्यादा होते हैं। तो जिंदगी में एक असूल याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप पुरसकून होके घर में रहें, आप कहीं वॉलंटियर करते हैं, दीन का कोई काम करते हैं, तो आप अपने काम को इंजॉय करें, ये ना हो कि नेकी बर्बाद गुना लाजिम हो जाए। तो उसके लिए ये दुआ कीजिए कि अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना। उल्फत अलफा जोड़ने को कहते हैं, ये जो अल्फी है ना इंग्लिश का लफ्ज़, वो भी मुझे लगता है इधर से ही निकला, हालांकि ये अरबी का लफ्ज़ है। तो मोहब्बत फाते आलम, अपने साथ वालों से प्यार कीजिए, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाना और बस ख़त्म, और ये और वो, अब मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं छोड़ के जा रही हूँ, ऐसा ना कीजिए। क्या करें, छोटी छोटी बातों को कैसे पीछे डालें, यही है जो काम नहीं करने देती। बस काम कर करके याद रखिए दूसरों को फ़ायदा दे जाएंगे, लेकिन खुद शायद कहाँ जाए नहीं पता, जैसे शम्मा खुद जलती है और दूसरों को रोशनियाँ दिखा जाती है। अल्लाह ना करे हम कोई ऐसे बन जाएं, खुद को मसरूफ करें, फारिग रहना छोड़ दें। बड़े बड़े इश्यूज छोटे हो जाते हैं जब हम मसरूफ हो जाते हैं। पॉजिटिविटी पर अपने साथ वालों की खूबियों को देखें, उनको नेमत समझें, फिर एक दूसरे को सलाम करें, मुस्कुराहट दें। एक जगह आप बैठे हैं और आप एक दूसरे से मुंह खींच के बैठे हैं, एक दूसरे को खाना खिलाइए, खिदमत कीजिए, और तहादु तहाबु, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मुझे ये सिखाती हैं कि जब अल्लाह ताला के लिए एक इंसान करता है तो क्या होता है। फिर आप देखिए कि पिछली आयतों में हमने इस्लामी हुकूमत की खारजा पॉलिसी और जिहाद की हिकमत अमली देखी है 58 से 62 में, इसका खुलासा ले लीजिए। आज ये भी एक बहुत बिग इशू है, पीस पीस पीस, यानी मुसलमान कोई हथियार नहीं जमा करें और दूसरे जितने मर्जी कर लें, मुसलमान एटम बॉम्ब बना लें तो उनके ऊपर बहुत सारे फतवे लग जाएं, और गैर चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब बना लें। तो आइए ज़रा समझिए इस्लाम का मिजाज सर उठाकर जीने वाला है। अल्लाह ताला क्या सिखाते हैं, हर वक्त तैयारी रखो, जदीद सामान हर बर तरबियत याफ्ता फ़ौज हो तुम्हारी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुसलमानों के पास अच्छी फ़ौज है। दिल अल्लाह से ना जुड़े हों तो अल्लाह के लिए कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। फिर इसी तरह दूसरा असूल याद रखिएगा कि असलहे के इस्तेमाल से ज़्यादा उसकी नुमाइश पसंदीदा है। कभी आपने 23 मार्च को देखी हो या 24 मार्च को देखी हो, परेड होती है, तो वो इजहार देखकर भी दिल में कुछ ना कुछ होता है। फिर इसी तरह आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा कीजिए, इज्तमाई कोशिशें कीजिए, आप सब कुछ अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं। वन मैन शो दीन का मिजाज नहीं, चाहे आप जंग में चले जाएं, जाएं हाँ अकेला लड़ने के लिए सिपाही, और जाए कमांडर और जरनैल, देखिए क्या होगा। और इसी तरह तरगीब जिहाद, खर्च करने वाले को बदला मिलेगा। इतना खूबसूरत ये टॉपिक है, इस वक्त तो वक्त नहीं है ना, वरना तो इसके ऊपर एक एक के ऊपर कितनी बात की जाए। तो मिसकॉन्सेप्शंस को दूर करने की ज़रूरत है। और रह गई जिंदगी और मौत, वो तो अल्लाह के हाथ में है, इसीलिए फरमा दिया या अय्युहन नबी हसबुक अल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, ए नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है और इन मोमिनों को जो तेरी पैरवी कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में मौत का डर नहीं था, और आपके साथ रहने वाले भी मौत से नहीं डरते, बल्कि किसी गैर मुस्लिम का कौल है कि मौत से ना डरने ने इन मुसलमानों को बहुत बहादुर बना दिया। हम कुछ भी कह दें मर जाओगे, ये कहते हैं जल्दी करो, हम तो देर नहीं करना चाहते। तो मौत का डर इंसान को कॉम्प्रोमाइजिंग बना देता है। और अल्लाह के नबी को कहा भी शायद को कहाँ ले जाएं, कहाँ छुपाएं, कैसे? आप कहते हैं कि ये जो सूरतें हैं बहुत सारे लोग इस पे उंगलियां उठाते हैं, अल्लाह ताला बचा के रखे। तो फरमाया या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलाइए, अगर तुम में 20 भी सब्र करने वाले हों तो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 100 होंगे तो 1,000 काफिरों पर गालिब रहेंगे, इस वास्ते कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अल्लाह तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में ना तवानी है, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब रहेंगे, और अगर तुम में से 1,000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2,000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक कि मुल्क में अच्छी खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो, और अल्लाह का इरादा आखरत है, और अल्लाह ताला जोरावर बा हिकमत है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सजा होती। गज़वे बदर के कैदियों के साथ क्या किया जाए या क्या ना किया जाए, उसकी तरफ इशारा है। बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की, खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूर रहीम है। और रह गए वो कैदी जो आपके पास हैं, तो क्या करें? ए नबी अपने हाथ तले के कैदियों से कह दो कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों में नेक नियति देखेगा तो जो कुछ तुमसे लिया गया है इससे बेहतर तुम्हें देगा, फिर गुना भी माफ़ फरमाएगा और बख्शने वाला अल्लाह मेहरबान है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु कहा करते थे, ये आयत मेरे बारे में, बदर के कैदियों में ये भी आए थे जिस्म पे कपड़े नहीं थे, अल्लाह के नबी तक बात गई, आपने ऐलान किया किसी के पास कुर्ता हो कि मेरे चचा को पहनाए, लंबे चौड़े थे और उस वक्त अब्दुल्ला बिन उबई का कुर्ता मिला और वो हजरत अब्बास को पहनाया गया। बाद में अल्लाह ने इनको ईमान दिया, इस्लाम दिया, और फिर अगली जंगों में माले गनीमत मिली, तो कहते थे अल्लाह ने ये मेरे लिए कहा कि अगर कुछ लिया तो वापस भी मिल गया, और अगर वो तुझसे खयानत का ख्याल करें तो ये तो इससे पहले खुद अल्लाह की खयानत कर चुके, कैसे? कुफर और शिर्क करके। आखिर इसने इन्हें गिरफ्तार करा दिया, और अल्लाह ताला इल्म और हिकमत वाला है। क्या पता चला कि इन आयतों में जो हमने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी वो अमन कायम करने के लिए थी, अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए थी, ना तो किसी का माल लेने के लिए, ना कुएं लेने, ना कुछ, ना दुनिया की बात, ना माल गनीमत, ना किश्वर कुशाई। तो आज तावीलों की जरूरत नहीं है, और ये सहाबा की खूबियां और सिफात है। बार बार देखे दो जगह मोमिनीन का लफ्ज आया। सहाबा वो थे जो अल्लाह के नबी की आंख का इशारा समझते थे, वो कहते थोड़ा थे करके ज्यादा दिखाते थे, कमिट लेस एंड डू मोर। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने इसमें ये बात भी सिखा दी कि कैदियों तक की तरबियत की जा रही है। यकीन कीजिए कि ये कुरान हकीकत में तरबियत की किताब है। गज़वे बदर के कैदियों को इल्म के लिए लगा दिया गया था, वो बच्चों को भी पढ़ाते थे और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी दीन सीखा, और अब वो आयत है जिसको सुनने के बाद फिर इंसान ठंडा होके नहीं बैठ सकता। आइए देखिए 72, जिसमें अल्लाह ताला बंदों को क्या खूबसूरत पैगाम देते हैं। आप अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर लेकर देखेंगे, और इसके अगली चंद आयतें सूरत के अंत तक। इन्नल्लज़ीना आमनू वहाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम वअन्फुसिहिम फी सबीलिल्लाह, जो लोग ईमान लाए, आप जरा लिस्ट बनाइए कि करना क्या पड़ता है अल्लाह को राजी करने के लिए। जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अपने मालों और जानों से अल्लाह की राह में जिहाद किया, और जिन लोगों ने इनको पनाह दी और मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के फरीक हैं, यानी ये टीम मेंबर्स हैं। और जो ईमान तो लाए हैं लेकिन हिजरत नहीं की, तुम्हारे लिए इनकी कुछ भी रिफाकत नहीं, यानी जिन्होंने कहा था करेंगे लेकिन कर नहीं सके वो काम, तो जरा उनको साइड पे कर दो जब तक कि वो हिजरत ना कर ले। इतना दो टोक है हमारा दीन। हाँ, अगर वो तुमसे दीन के बारे में मदद तलब करें तो तुम पर मदद करना ज़रूरी है, सिवाय इन लोगों के तुम में और इनमें अहदो पैमान है। तुम जो कुछ कर रहे हो अल्लाह खूब देख रहा है। यहाँ नोट कीजिएगा, ये वो लोग थे जिनको आप और मैं सहाबे कराम कहते हैं, किसी को महाजर और किसी को अंसार कहते हैं। यकीन कीजिए, आमनू व हाजरू व जाहदू, ये स्टेप्स पूरे किए बगैर दीन की इमारत नहीं बनती। आज मुझे आपको बना बनाया दीन दिख रहा है, हमें कदर नहीं है। बिल्कुल उसी बहू की तरह जिसको बना बनाया घर मिल गया, सास से तो पूछिए तिनका तिनका जोड़कर घर बनाया। अल्लाह के नबी ने तिनका तिनका जोड़कर ये उम्मत बनाई थी, आज हम इस उम्मत को बखेर रहे हैं। ये इस्लाम, ये शरीयत, ये वही 23 साल में उतरी, हमने आज इसकी धज्जियां भी बिखेर दी अधूरी इताअत के साथ। तो इस्लाम की इमारत तामीर की इन लोगों ने। ये सहाबा वो थे जिनका खून और पसीना इस्लाम की बुनियादों में लगा। आज भी जहां दीन का नया काम शुरू होगा, वहां ऐसे ठुके हुए, मंझे हुए, जमे हुए लोग चाहिए, वरना शीशे की बुनियाद डाल दी तो इमारत कितनी जल्दी गिरेगी। तो याद रखिए, अगर आपको बहुत शौक है ना कि अल्लाह हमसे कोई काम ले, तो पहले अपने आप को ठोकिए और जमाइए, और ये सारी हिजरतें और जिहाद और ये सारी चीजें इंसान को फिर और से और जमा देती हैं। इसी तरह फरमाया, काफिर आपस में एक दूसरे के रफीक हैं, अगर तुमने ऐसा न किया तो मुल्क में फितना होगा और जबरदस्त फसाद हो जाएगा। इसके अलावा जो लोग ईमान लाए और हिजरत की और अल्लाह की राह में जिहाद किया और जिन्होंने पनाह दी और मदद पहुंचाई, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, इनके लिए बख्शिश है और इज्जत की रोजी। और जो लोग इसके बाद ईमान लाए और हिजरत की और तुम्हारे साथ होकर जिहाद किया, ये साथ होकर भी नोट कीजिएगा, टीम वर्क। अकेली ईंटें बिखेर दीजिए, कोई बच्चे क्रिकेट खेलेंगे तो विकेटें बना लेंगे, कुछ मजदूर चाय बनाना चाहेंगे तो ईंटों को जोड़ेंगे और चूल्हा बनाएंगे। वो ईंट जो इमारत में लग जाए वो बच जाती है। आज यहाँ से उठने से पहले दुआ कीजिए, आज इस्लाम की ये त्रिड़े खाई हुई गिरती पड़ती इमारत में मुझे ईंट लगा दे, जैसे सहाबा को ईंटें बनाया था। अबू बकर सिद्दीक एक ईंट थे, उमर एक ईंट थे, उस्मान ईंट थे, अली थे, और उसके बाद तो एक लंबी लिस्ट है। हर एक की खूबियाँ अलग, हर एक का ईमान का दर्जा फ़र्क, हर एक के हालात फ़र्क, हर एक की कुर्बानियाँ फ़र्क। आज भी यही काम करेंगे, लेकिन रास्ते में है कराहियतुल मौत, हाय मर ना जाए, हाय बीमार ना हो जाए, खून ना निकल जाए, हाय ये ना हो। शहादत का शौक बढ़ रहा है पर मरना नहीं चाहते। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। आज आपको मुझे इस तौर पे काम करना पड़ेगा, फिर बात होगी। फरमाया, पस ये लोग भी तुम में से ही हैं और रिश्ते नाते वाले इनमें से बास बास के ज्यादा नजदीक हैं। अल्लाह के हुक्म में बेशक अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। साहबा की खूबियां सुननी है तो एक हदीस सुन लीजिए। सही बुखारी की रिवायत है 2786। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल किया गया कि सबसे अफजल शख्स कौन है। आपने फरमाया, वो मोमिन जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल से जिहाद करे। सहाबे कराम ने पूछा, इसके बाद कौन? फरमाया, वो मोमिन जो पहाड़ की किसी घाटी में रहना इख्तियार कर ले, अल्लाह का खौफ रखता हो और लोगों को छोड़कर अपनी बुराई से इनको महफूज रखे। तो जानो माल से अल्लाह की राह में जिहाद करना कभी कभी इस तरह भी होता है। देखिएगा कि कैसे नायतों में अल्लाह ताला ने खूबसूरत तरीके से दावत दी इस बात की कि अपने दर्जे खुद बनाओ, अपने मार्क्स खुद लगाओ। मुसलमानों में से चार गिरोहों का जिक्र है अगर आप देखें, और उसको अगर दो बड़ी कैटेगरीज में रखिए तो एक है कि मुहाजिर बनो या अंसार बनो। मुहाजिर वो है जो नया नया दीन छोड़ रहा है। आप सोचिए, आप कुरान सुनते हैं, इससे पहले आपने नहीं सुना, मसलन सूरत आपने पढ़ी आराफ, उसमें लिबास का हाल बात थी। अब आपको लगा कि मेरा तो लिबास ऐसा नहीं है, बस आप समझ लीजिए आप मुहाजिर हैं। अल्लाह की रजा के लिए अपनी मनपसंद चीज़ों को और उन कपड़ों को ऑल्टर करते हैं, अब आप हैं मुहाजिर। अंसार वो हैं आज के दौर के जो जम चुके, जिनको 2-4 साल हो चुके सुनते सुनाते, अब उनके घर वाले भी मान गए, ये नहीं छोड़ेंगी, ये नहीं जाएंगी, ये नहीं छोड़ेंगी। वो भी कहते हैं, अच्छा करती रहो, फिर नेकी है ना, चलो मैं बच्चों को संभाल लेता हूँ। याद रखिए, वक्त के साथ साथ घर वाले क्या पूरी दुनिया वाले मुआविन हो जाते हैं। जो शुरू का रिएक्शन नहीं बर्दाश्त कर पाते ना, असल में वो ही परेशान है। तो मुसलमानों पर एक दूसरे की मदद करना लाजिम है किसी भी मौके पे, और मदीना के लोगों ने इसकी दलील दे दी। फिर इसी तरह मदद ना करने और तरके जिहाद की सूरत में फितने और फसाद फैलते हैं। आज जो फितने और फसाद है उसकी बहुत बड़ी वजह है, मुसलमान मुल्क दूसरे मुसलमान की मदद ना करे, अल्लाह इसको क्या नाम देगा? सोचने की बात है। इंसानी सतह पे, इंफरादी तौर पे तो ये बातें दूसरी हैं। फिर इसी तरह मुहाजर और अंसार सबको मिलकर दीन का काम करना है। हिजरत और जिहाद करने वाले सच्चे मोमिनीन के लिए मगफरत और रिस्क है, अल्लाह हमें ऐसे ही लोगों में शामिल कर ले। तो 63 से 75, साथियों के दरमियान उल्फत अल्लाह के फजल से ही मुमकिन है। और याद रखिए कि लीडर जितने मुखलिस होते हैं, अल्लाह ताला साथियों के दिलों में मोहब्बत डाल देता है। वो लोग नाम भी नहीं जानते कि एक दूसरे के खिलाफ कोई बात करें या सोचें या लेग पुलिंग करें, और ये लोग फिर बहुत दूर तक जाते हैं। और जो खुद आपस में ही कटे फटे और दूसरों से नफरतों की बातें करें, फिर वहां बरकत नहीं होती। फिर इसी तरह कुव्वत ईमान कलील मोमिनों को कसीर कुफार पर गालिब कर देती है। तो मांगिए अल्लाह से ईमान। देखिए, हथियार तो पैसों से आते हैं, ईमान तो पैसों से नहीं आता। काफिरों को कैदी बनाने पर इजहार नाराजगी का जिक्र था, कैदियों से इजहार शफकत थी, और खास तौर पर बंदा मोमिन की जाहरी सिफात। तो सूरत अनफाल यहाँ पूरी हुई। चंद अहकाम देखिए जिहाद से मुतल्लिक जो सूरत अनफाल में आए, 41 से 47 यानी पारे के शुरू से। असूले तकसीम माले गनीमत और जिहाद में कामयाबी के असूल देखे। फिर आयत 53 में अल्लाह ताला का असूल क्या था कि जवाले उम्मत की वजह मुसलमानों का तर्के जिहाद और गुनाहों की कसरत है। आयत 60 से 72 इस्लामी हुकूमत की खारजा पॉलिसी और जिहाद की हिकमत अमली। और आयत 73 मुसलमानों की एक दूसरे की मदद ना करना और तर्के जिहाद करना असल में फितनों को बुलाना है और फसाद होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि आज के दौर का फितना और फसाद दूर करे, हम मुसलमानों के दिल जोड़ दे, इसमें उल्फत पैदा कर दे। अगली सूरत तौबा है जो इस लिहाज से यूनिक है कि इससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं है, और हज़रत अली के बकौल ये सूरत अपने हाथ में तलवार थाम कर आई, क्योंकि इसमें भी ऐसी ही हिकमत अमलियाँ हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगी ज़िंदगी का हिस्सा थी। और तौबा क्यों है कि इसको पढ़ने के बाद तौबा करने को दिल करता है, और इसमें तीन मुखलिस सहाबा की सच्ची तौबा का जिक्र है जो अगले पारे में, आइए देखिएगा। बराअतु मिनल्लाहि व रसूलिही इलल्लज़ीन आहदतु मिनल मुशरिकीन, अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से बेजारी का ऐलान है। लफ्ज़ नोट कीजिएगा, अगर आपने लफ्ज़ अल्लाह को गलत तरफ पढ़ दिया या रसूल के लफ्ज़ की ज़बर ज़ेर बदल दी तो मानी बिल्कुल बदल जाएगा। क्या ऐलान है इन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने अहदो पैमान लिया था, पस है मुशरिको तुम मुल्क में 4 महीने तक तो चल फिर लो, जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ये भी याद रहे कि अल्लाह ताला काफिरों को रुसवा करने वाला है। बड़े सालों का सब्र था ये। 13 साल मक्का में अल्लाह के नबी और सहाबा ने परसिक्वेशन को बर्दाश्त किया, फितनों का शिकार थे, मारे खाई, जंगें लड़ी, सब कुछ हुआ, सब्र 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 महज सब्र। मदीना में आकर तो एक पूरी अल्लाह के नबी की हुकूमत कायम हो गई, पहली बस्ती थी इस्लाम के नाम पे, सबर सबर। लेकिन करते करते फिर आखिर हज अकबर आ गया। अल्लाह के नबी के ऊपर ये आयतें नाजिल होती हैं, मज़ीद 4 माह की और मोहलत दे दो, और उसके बाद यानी ऐलान करने से पहले इत्तलाए आम वाला अंदाज है। 3 ऑप्शंस दी जा रही हैं, इसके बाद भी अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा। थोड़ा सा इसको भी समझने की ज़रूरत है, इंशाल्लाह आगे जाकर हम इस पे मज़ीद बात करते हैं। यहाँ बस इतनी सी बात याद रखिएगा, इस आयत को तवज्जो से पढ़ना, इसके हमारे मिसकॉन्सेप्शन का इसमें कुछ इजाला है। मसलन हज अकबर, हमारे यहाँ जुमे के दिन के हज को कहते हैं, हालांकि अरब हज असगर उमरे को और हज अकबर हज को कहते हैं, क्योंकि जो हज था वो जुमे के दिन नहीं था लेकिन उसको हज अकबर ही कहा गया था। तो फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से लोगों को बड़े हज के दिन साफ इत्तला है कि अल्लाह मुशरिकों से बेजार है और इसका रसूल भी। अगर अब भी तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। देखिए क्या दिल चाह रहा है इन आयतों को देखकर, क्या अंदाज है। अल्लाह ताला नहीं चाहते कि काफिर मक्का से निकले, ना इनको मारा जाए, ये तौबा कर लें, चेंज योर सेल्फ। आखिरी लम्हे तक किसी के पलट आने की उम्मीद रखिए, ये सिखा रही आयत आपको। और अगर तुम रूगरदानी करो तो जान लो कि तुम अल्लाह को हरा नहीं सकते, और काफिरों को दुख की मार की खबर पहुंचा दीजिए, सिवाय इन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहदा हो चुका है और उन्होंने तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की, तो तुम भी इनके मुआहदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। अल्लाह ताला परहेजगारों को दोस्त रखता है। देखिए, जो गैर मुस्लिम कुछ नहीं कहते तो उनको कुछ नहीं कहना, और मुआहदे और वादे पूरे करने की अहमियत भी समझ आ रही इन आयतों से। असल में ये अल्लाह के नबी के मिशन के अख्तिताम का वक्त आ चुका था, मक्का भी फतह हो गया, अब तो बस अल्लाह के नबी के जाने के दिन करीब थे। तो इंटरनेशनल पॉलिसीज ऑफ इस्लाम यहाँ इन आयतों में शो की जा रही हैं। फिर हुरमत वाले महीनों के गुजरते ही मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, इन्हें गिरफ्तार करो, इनका मुहासरा करो, और इनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो। हाँ, अगर वो तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाए और ज़कात अदा करने लगें तो तुम इनकी राहें छोड़ दो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। कोई भी मुल्क अपने मुल्क में बगैर वीजे के रहने वाले के साथ क्या करता है, बस यही हालात कुछ वहां इस वक्त बने हुए नजर आ रहे हैं। अगर मुशरिकों में से कोई तुझसे पनाह तलब करे तो इसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि हत्ता यस्मा कलामुल्लाह, वो अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर इसे अपनी जाय अमन तक पहुंचा दे। ये इसलिए है कि ये लोग बेइल्म हैं, इसको जरूर नोट कीजिएगा। अगर ये बदलना चाह रहे हैं तो इनको इस कुरान की आयतें सुनाओ। ये है इस्लाम का खूबसूरत पैगाम, जस्टिस। यानी दुश्मन है, 23 साल की दुश्मनियाँ कोई थोड़ी नहीं होती, लेकिन अभी भी इनको मौका दे दो तो दीन सीखने का मौका दीजिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को। मुशरिकों का अहद अल्लाह और उसके रसूल के नज़दीक कैसे रह सकता है, सिवाय इनके जिनसे तुमने अहदो पैमान मस्जिद हराम के पास किया। जब तक वो लोग तुमसे माहदा निभाएं, तुम भी इनसे वफादारी करो। अल्लाह ताला मुत्तकियों से मोहब्बत रखता है, और इनके वादों का क्या एतबार। इनका अगर तुम पर गलबा हो जाए तो ना तो ये कराबदारी का ख्याल करे ना अहदो पैमान का। अपनी जुबानों से तो तुम्हें परचा रहे हैं, लेकिन इनके दिल नहीं मानते, इनमें अक्सर फासिक हैं। इन्होंने अल्लाह की आयतों को बहुत कम कीमत पर बेच दिया और इसकी राह से रोका। बहुत बुरा है जो ये कर रहे हैं। ये तो किसी मुसलमान के हक में किसी रिश्तेदारी का अहद का मुतलक लिहाज नहीं करते, ये हैं ही हद से गुजरने वाले। आप भी अगर ये तौबा कर लें और नमाज के पाबंद हो जाएं और ज़कात देते रहें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। हम तो जानने वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान कर रहे हैं। तो नोट कीजिए लफ्ज़ तौबा, तौबा कितनी दफ़ा आया। इस सूरत का नाम तौबा इसलिए भी है कि बार बार मक्का वालों को तौबा करने की दावत दी जा रही है। और याद रखिए कि अल्लाह ताला के नबी ने जब ये आयतें पढ़ी कि देखो अगर ये मुसलमान होके तुम्हारे पास आ जाए, और बहुत सारे लोग मुसलमान हुए थे, आप सीरत में से जाके देखेंगे तो जौक दर जौक लोग आए थे दीन में फतेह मक्का के बाद और उसके बाद, खास तौर पे ये जो वाकयात हैं, किसी एक सहाबी ने एतराज नहीं किया, अल्लाह के नबी ये क्या, हम तो शुरू से आपके साथ, हमने हिजरतें की, कुर्बानियां की, घर छोड़े, और अब नए लोगों को हमारे भाई बना रहे हैं, इनको वही सेंक्शंस मिल रही जो हमें मिल रही। ये थी तरबियत जो अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा की कि बाद और शुरू का बात नहीं है, तुम इनको साथ रखो, इनकी तरबियत करो, इनकी कमियां बेशियां दूर करो। यानी इस गिल्ट से निकाल दिया आने वालों को भी और पहले वालों को भी कि तकाबुल ना करो, बल्कि इस चीज को सामने रखो कि जब दीन ने तुम्हें मौका दिया तो तुमने उसको लबैक कैसे कहा। असल गुस्सा तो अल्लाह का मक्का वालों पे था कि जिन्होंने इतने साल भी अल्लाह के नबी की बात सुनने के बाद भी अपने रंग ढंग नहीं बदले। अगर ये लोग अहदो पैमान के बाद भी अपनी कस्में तोड़ दें और तुम्हारे दीन में ताना जनी करें तो तुम भी इन सरदाराने कुफर से भिड़ जाओ। इनकी कस्में कोई चीज नहीं, मुमकिन है इस तरह वो भी पास आ जाएं। देखिए इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स हैं कि एक लफ्ज़ और कहने की जरूरत नहीं है इनको समझने के लिए। कितने साल का सब्र था उसके बाद जो अहकामात नाजिल हुए। इसके बाद जो बदलना चाहते हैं ले आओ, जो तौबा करने चाहते हैं बिस्मिल्ला, जो पलटना चाहते हैं ले आओ, जो शर्मसार है उनको ले आओ। तो अल्लाह ताला वापसी का दरवाजा किसी के लिए भी बंद नहीं करता। तुम इन लोगों की सरकूबी के लिए क्यों तैयार नहीं होते जिन्होंने अपनी कस्मों को तोड़ दिया और पैगंबर को जिला वतन करने की फिक्र में है, और खुद ही अव्वल बार उन्होंने तुमसे छेड़ की है, क्या तुम इनसे डरते हो? अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहक है किस बात का, अल्लाह ही ज्यादा मुस्तहक है इस बात का कि तुम इससे डर रखो, बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का डर लोगों की बातों के डर से इंसान को आजाद कर देता है। फरमाए इनसे तुम जंग करो, अल्लाह ताला इन्हें तुम्हारे हाथों अजाब देगा, इन्हें जलील और रुसवा करेगा, तुम्हें इन पर मदद देगा और मुसलमानों के कलेजे ठंडे करेगा, इनके दिल का गम गुस्सा दूर करेगा, और वो जिसकी तरफ चाहता है रहमत से तवज्जो फरमाता है। अल्लाह ताला जानता बूझता हिकमत वाला है। किस तरह मुसलमानों के सीने ठंडे हुए, याद रखिए कि कुफार को कुफर पे मरते देखकर नहीं, बल्कि मुसलमानों के दिल ठंडे होते थे गैरों को दीन पर अमल करता हुआ देखकर। तुम्हारा दीन इंतकाम का दीन नहीं है, बल्कि हमारा दीन इस बात का दीन है कि लोगों को इस्लाम की दावत दो। एक जुमला लिख लीजिएगा कि इस्लाम की दुश्मनी काफिर से नहीं, वो तो कुफर से। अभी तो ऊपर पढ़ के आए कि आज इस्लाम कबूल करे तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। तो दारे हाजिर के मुसलमानों के मसाइल का हल आयत 15 की रोशनी में देखिएगा, हुब्बुल मौत व कराहियतु दुनिया, गौर से पढ़िएगा। यानी जब तक मुसलमान दुनिया से कराहत और मौत से मोहब्बत नहीं करने लगेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। अब क्या के मरने लगे? नहीं, तैयारी कीजिए, इससे ये मुराद है कि मरने के बाद के लिए तैयारी कीजिए। दूसरी चीज ईमान और तकवा हासिल करना, जिहाद और जिद्दोजहद करनी है, और उम्मत का अरूज और इज्जत वापस लाना है। और इंशाल्लाह ये लेकर आना है। हमने एम्बेरस्ड मुस्लिम नहीं बनना, शर्मसार नहीं होना। हमारा इस्लाम बहुत प्यारा है, हम किसी दुनिया के बाजार में रख कर इसको दिखा सकते हैं। रिवायत सुनिएगा अहमद तबरानी और हाकिम की, पेज नंबर 83 पे, उबादा बिन सामित से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की राह में जिहाद करो, बेशक जिहाद फी सबीलिल्लाह जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है, और इसके ज़रिए अल्लाह ताला रंजो गम से निजात दिलाता है। और फिर आगे ज़रा सा शऊर बेदार किया जा रहा है। आयत 16 को पढ़ते वक्त ज़रा सा ख़ुद को रिलैक्स करें, क्योंकि आप देखें ना कि पीछे सारी बातें करते पढ़ते हुए नए लोगों को भी सामने रख दिया, पुरानों को भी रखा, और अब यहाँ दावत दी जा रही है। क्या तुम्हारा ख्याल है सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान हो जाओगे? यानी नोट कीजिएगा कि ये आयत असल में नए मुसलमानों के लिए थी, जो अब इस वक्त इस्लाम के गिरोह में दाखिल हो रहे थे। अम हसिब तुमान तुतरकू, क्या तुम समझे बैठे हो कि तुम छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अब तक अल्लाह ने तुम में से नहीं इन्हें मुमताज़ नहीं किया, जो मुजाहिद हैं और जिन्होंने अल्लाह के और रसूल के और मोमिनों के सिवा किसी को दिली दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह ताला खूब खबरदार है जो तुम कर रहे हो, यानी तुम्हारी सब ढकी छुपी अल्लाह को पता है। क्या पता चला कि पुराने लोगों ने तो हिजरत और जिहाद करके अपना आप मनवा लिया, अब नए मुसलमानों को कहा जा रहा है। अभी तुमने कलमा पढ़ लिया है, गोया के दाखिला फॉर्म लिया है, अभी तुम्हारा एंट्री टेस्ट होगा, तुम्हारे दाखिले के कंफर्मेशन के मैसेजेस तुम्हें जाएंगे। तुम कैसे भी इतनी जल्दी बच जाओगे? तो याद रखिए, अगर कोई बात नफ्स पे चोट डाले और किसी चीज़ को छोड़ने छाड़ने का इरादा आए, तो इस आयत को जान लीजिए कि अल्लाह ताला की कोई ज़रूरत नहीं, हम सब को अल्लाह की ज़रूरत है। और जब कच्चे लोग अल्लाह की मस्जिदों के टेक केयरर हो जाते हैं तो क्या होता है? आयत 17, मा काना लिल मुशरिकीन अन यअमुरू मसाजिद अल्लाह, लायक नहीं कि मुशरिक अल्लाह ताला की मस्जिदों को आबाद करें। हालांकि वो खुद अपने कुफर के आप ही गवाह हैं, इनके अमाल गारे तौरकारत हैं और वो हमेशा के तौर पर जहन्नमी हैं। अल्लाह की मस्जिदों की रौनक और आबादी तो इनके हिस्से में है जो अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखते हों, नमाजों के पाबंद हों, ज़कात देते हों, अल्लाह के सिवा किसी से न डरते हों। तवक्को है कि यही लोग यकीनन हिदायत याफ्ता हैं। अल्लाह हमारा शुमार और हमारे बच्चों का शुमार इन लोगों में कर ले कि जो ईमान के साथ मस्जिदों को आबाद करने वाले हों। मक्का वाले चंद रस्मी नेकियां करके खुद को नेक समझते थे, उसी की तरफ इशारा है आयत नंबर 19 में, अजाल तुम सिकायत अल हाजी व इमारत अल मस्जिद अल हराम, क्या तुमने हाजियों को पानी पिला देना और मस्जिद हराम की खिदमत करना इसके बराबर कर दिया जो अल्लाह पर और आखरत के दिन पर ईमान लाए और अल्लाह की राह में जिहाद किया? ये अल्लाह के नज़दीक बराबर के नहीं, और अल्लाह जालिमों को हिदायत नहीं देता। निजाहरी नुमाइशी नेकियां करके जन्नत नहीं मिलेगी, इसके बरक्स जो लोग ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद किया, वो अल्लाह के यहाँ बहुत बड़े मर्तबे वाले हैं, और यही लोग मुराद पाने वाले हैं। अल्लाह इन लोगों में शामिल कर ले, दे दो बस सब दे दो, क्योंकि दुनिया से कराहत और मौत से प्यार। इन्हें इनका रब खुशखबरी देता है अपनी रहमत की और रजामंदी की और जन्नतों की, और इनके लिए वहाँ हमेशा रहने वाली नेमत है, वहाँ ये हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह के पास यकीनन बहुत बड़े सवाब हैं। ऐ ईमान वालों, अब है असल में ईमान का ऐसा टेस्ट कि जो पास करना बहुत मुश्किल और बहुत मुहाल है। या अय्युहल्लज़ीना मनु, ऐ ईमान वालो, अपने बापों को और अपने भाइयों को दोस्त न बनाओ, अगर वो कुफर को ईमान से ज्यादा अजीज रखे, तुम में से जो भी इनसे मोहब्बत रखेगा वो पूरा गुनाहगार जालिम है। तो देखिएगा दौरे हाजिर का फितना, बगैर हिजरत किए और जिहाद के जन्नत की ख्वाहिश है। हालांकि आप देखिए कि आयत 23 में हमने जन्नत हासिल करने के मराहिल देखे, बिल्कुल तरतीब को सामने रखिए। सबसे पहले ईमान लाना पड़ेगा, फिर हिजरत करनी पड़ेगी, फिर जान और माल से जिहाद करना पड़ेगा। तो इंजाम क्या है? अल्लाह की रहमत और उसकी जन्नत, यानी बातों से जन्नत नहीं मिलती। और उसके बाद फिर चंद रिश्ते, आप नोट कीजिएगा, 8 चीज़ों का जिक्र है, जिसमें से 5 रिश्ते हैं खून के और 3 फिर मादी चीज़ें हैं। यानी आप कह लीजिए कि दावे ईमान के बाद के 2 मराहिल हैं, एक है हिजरत और एक है जिहाद फी सबीलिल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हुफ्फतिल जन्नत बिल मकारह, जन्नत घेर ली गई है मकरूह चीज़ों से, यानी जो इंसान को अच्छी नहीं लगती। तो याद रखिए कि हमारे दीन में डायनामिज्म है, जोश है, स्टेगनेंट नहीं है हमारा दीन, मुंजमद नहीं है, उधर तो बू हो जाती है। तो अल्लाह कहते हैं, हरकत करो, कोशिश करो, काम करो, अमल करो, अमल कराओ, जागो, और अगर इस रास्ते में कोई रुकावट बने तो फिर क्या करो, अमली जिहाद के मराहिल से गुजरते जाओ। रिश्तों का ये जिहाद है और एड्रेस ऊपर ईमान वालों का लिखा हुआ है। कैसे? आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे कुंबे कबीले वाले और तुम्हारे कमाए हुए माल और वो तिजारत जिसकी कमी से तुम डरते हो और वो हवेलियाँ बंगले विलास कोठियाँ जिन्हें तुम पसंद करते हो, अगर ये तुम्हें अल्लाह से और इसके रसूल से और इसकी राह के जिहाद से भी ज़्यादा अजीज़ हैं तो तुम इंतज़ार करो कि अल्लाह ताला अपना अजाब ले आए। अल्लाह ताला फासिकों को हिदायत नहीं देता। यहाँ किन को फांसी कहा जा रहा है जो अल्लाह के दीन को पीछे डालकर इन्हीं 8 चीज़ों में खोए रहे। याद रखिए, कभी माँ बाप आगे नहीं बढ़ने देते, कभी औलाद आगे नहीं बढ़ने देती, कभी शौहर, कभी बहन भाई, कभी कुंबे कबीले वाले। तो अल्लाह ताला पैगाम देते हैं, इन सब से हुब तो हो लेकिन अहब ना हो। फांसी कौन है इधर जो कुरान के मुकाबले पर इनमें से किसी एक मोहब्बत को फौकियत दे? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्हीं में रहकर अल्लाह को खुश करना है। देखिएगा जरा, 8 मोहब्बतों को अल्लाह रसूल और जिहाद पर तरजीह देने का फितना है जुम्मत मुस्लिमा में। आयत 24 इसकी दलील है, यानी बाप बेटे भाई बीवियां अजीज अकारिब माल तिजारत और घर। दूसरे पलड़े में अल्लाह, उसका रसूल और उसके रास्ते की जिद्दोजहद। हुब्बे दुनिया के फितने में मुब्तला लोग फासिक हो जाते हैं, अल्लाह की रहनुमाई से महरूम और नाकाम है। आपको वजह समझ आ रही होगी कि आज आखिर क्यों नहीं लोग आपके साथी बनते। इतनी मुश्किल जिंदगी कौन बर्दाश्त करे जो दूर से मुश्किल लगती है, करीब आने पे ये फूलों की सेज है। तो 1 से 24 आयात देख ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। मुशरिकीन अरब के लिए फैसला कुन ऐलान देखा, हक और बातिल में सुलह नहीं हो सकती, फतह और नुसरत खूने जिगर देकर ही मिलेगी। महदूद मजहबी तसव्वुर की जोरदार नफी है। दोस्ती की बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ईमान पर रखो। अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। और अब अल्लाह ताला पिछला एक वाक्या सामने लाते हैं। हुनैन की जंग थी, फतेह मक्का से 19 दिन के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए निकल गए थे। असल हुआ क्या कि जब मक्का फतह हुआ, और उस दौर में भी मक्का की हैसियत एक हब की थी, पहले मक्का मुशरिकों के हाथ में था तो इर्द गिर्द के जो बद्दू कबीले थे वो मुशरिक कल्चर से मरूब थे। अब जब मुसलमान आए तो उनको गम लग गया कि ओहो, ये तो अब हम पे पाबंदियां लगेंगी। तो चनाचे उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ थोड़ी सी छेड़खानी की। अल्लाह के नबी नहीं डरते थे, आप मुसलमानों का एक गिरोह लेकर पहुंचे और वहां जो कुछ हुआ, वक्ती भगदड़ तो मची लेकिन अल्लाह ने यहाँ भी थाम लिया, उसी का जिक्र है देखिएगा। और इससे पता चलता है कि एक मौके पे पिछले मौके को याद कर लेना चाहिए। कैसे? यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत से मैदानों में तुम्हें फतह दी है, और हुनैन की लड़ाई वाले दिन भी, जबकि तुम्हें अपनी कसरत पर नाज हो गया था लेकिन इसने तुम्हें कोई फायदा ना दिया, बल्कि जमीन बावजूद अपनी कुशादगी के तुम पर तंग हो गई, फिर तुम पीठ फेर कर मुड़ गए। आज भी घर कुशादगियों के बावजूद तंग हो रहे हैं, क्यों? कैसे लगता है लॉक है, अंदर बंद है। याद रखिए, आज उम्मत मुस्लिमा पे पूरी दुनिया में लॉकडाउन है। ये तो वक्ती लॉकडाउन है ना, जो कोरोना वायरस और इन हालात का पाबंद है, मुसलमानों पे भी आज दुनिया तंग है। अल्लाह ताला हमारे हालात बदल दे, शर्त है कि हम अपनी हालत बदल लें। फिर अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन अपने नबी पर और मोमिनों पर उतारी, और अपने वो लश्कर भेजे जिन्हें तुम देख नहीं रहे थे, और काफिरों को पूरी सजा दी। इन कुफार का यही बदला था। फरिश्तों की तरफ इशारा है। फिर इसके बाद भी जिस पर चाहे अल्लाह ताला अपनी रहमत की तवज्जो फरमाएगा, अल्लाह ताला ही बख्शिश और मेहरबानी करने वाला है। ऐ ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं, वो इस साल के बाद मस्जिद हराम के करीब भी न फटकें। अगर तुम्हें मुफलसी का खौफ है तो अल्लाह ताला तुम्हें दौलतमंद कर देगा। यानी लोगों को लगा कि अगर मक्का में या हज के मौके पे कुफार नहीं आएंगे तो हमारी तिजारत कैसे चलेगी, क्योंकि मक्का में आज भी आप देख लीजिए कि हज उमरे के साथ उनकी मईशत चलती है। तो उसकी तरफ इशारा है कि तुम इनके जाने से परेशान न हो, अल्लाह ताला तुम्हें अपने पास से दौलत भी देगा, फजल भी देगा, और अल्लाह ताला हिकमत वाला और इल्म वाला है। और फिर कह दिया, इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क्यामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और उसके रसूल की हराम करदा शय को हराम नहीं जानते। ऐसे लगता है कि अल्लाह का गजब भड़क रहा है उन लोगों पे जो सारी जिंदगी अल्लाह के दीन की हदें भी पामाल करते रहे और उसके रसूल के रास्ते में कांटे भी बिछाते रहे, ना दीन हक को कबूल करते हैं इन लोगों में से जिन्हें किताब दी गई है, यहाँ तक कि वो जलील व ख्वार होकर अपने हाथ से जिजिया अदा करें। यहूद कहते हैं उजैर अल्लाह का बेटा है, और नसरानी कहते हैं कि मसीह अल्लाह का बेटा, नऊज़ु बिल्लाह। ये कौल सिर्फ इनके मुंह की बात है, अगले मुनकिरों की बात की ये भी नकल करने लगे। अल्लाह इन्हें गारत करे, वो कैसे पलटाए जाते हैं। यानी लोग हमेशा दूसरों की बोली बोलने लग जाते हैं, तो मक्का वालों ने वही कहा जो कि अहले किताब ने कहा था, तो ऐसे लोगों से मना किया गया कि देखो जरा अपने आप को पीछे करो ऐसे लोगों से कि जो हकीकत में तुम्हारे दीन का मजाक उड़ाते हैं। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने आलिमों और दरवेशों को रब बना रखा है, और मरियम के बेटे मसीह को, हालांकि इन्हें सिर्फ एक अकेले अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया गया था जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो पाक है इनके शरीक मुकर्रर करने से। नसारा के एक बातिल अकायद का तस्करा है इन आयात में, और अब सब की इज्तमाई ख्वाहिशात, युरीदून युत्फि नूर अल्लाही बिअफवाहिहिम, वो चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, और अल्लाह ताला इनकारी है मगर इसी बात का कि अपना नूर पूरा करे गो काफिर ना खुश हों। वो सारी एंटी इस्लाम कोशिशें, वो प्रोपेगंडे, अल्लाह ताला ने उसकी तरफ इशारा कर दिया कि जब लोग इस तरह की बातें करते हैं तो उनके साथ फिर अल्लाह ताला का मामला कैसा होता है। अब देखिए यहाँ मुंह की फूकों से क्या मुराद है, मीडिया है, और ऐसे लगता है कि बस ऐसे लोग अल्लाह ताला के दीन को मिटाने की कोशिशों में। तो याद रखिए कि शम्मा से सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है, जिसके हाथ में शम्मा है। दूर वाला फूक मारेगा तो बुझेगी तो नहीं, जिसके हाथ में वो एक हल्की सी फूक मारेगा बुझेगी। तो एक जुमला नोट कीजिए, आज के इस्लाम को मुसलमान से खतरा, हम बेअमल मुसलमान अपने इस्लाम को दूसरों के लिए पेश करते हैं, अल्लाह ताला हमें मुआफ़ कर दे, बहुत बड़ा जुर्म है। तो क्या सीखा 25 से 32 में, अल्लाह को ना मानने वालों का शिर्क, फैसला कुन शय असबाब नहीं मदद अल्लाह ही की तरफ से आती है, मुशरिकीन की मस्जिद हराम में दाखिले पर पाबंदी, इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों की हैसियत जिम्मी की होगी जिज्या देंगे, अहले किताब साजिशों के जरिए इस्लाम का रास्ता रोकना चाहते हैं, और अब अल्लाह के नबी के मिशन की बात है, क्यों भेजा, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक्की लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही वलौ करिहल मुशरिकून। इसी ने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा है कि इसे और तमाम मजहबों पर गालिब कर दे अगरचे मुशरिक बुरा माने। 3 दफा यह आयत कुरान में आती है कमोबेश। इस्लाम का मिजाज ऊपर रहने का है, जैसे मक्खन हमेशा ऊपर रहता है, आप हाथ से उसको नीचे भी करें ना लस्सी में चला भी जाए फिर वापस आएगा। तो लिखिए इस्लाम का मिजाज डोमिनेंसी का है, इंशाल्लाह आगे जहाँ यह आयत आएगी वहाँ मजीद डिटेल देखेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अक्सर उलमा और आबिद लोगों का माल नाहक खा जाते हैं और अल्लाह की राह से रोक देते हैं, और जो लोग सोने और चांदी का खजाना रखते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर पहुंचा दीजिए। दीनदारों पर कड़ी तनकीद है कि माल लेते किसी और नाम से हैं और इस्तेमाल अपनी ज़ात पे या अपनी मर्जी की जगहों पे करते हैं, और ये वो चीज़ होती है जो किसी कौम को तबाह बर्बाद करने के लिए काफ़ी होती है। जिस दिन इस खजाने को आतिशे दोजख में तपाया जाएगा, फिर इस दिन इनकी पेशानियां और पहलू और इनकी पीठें दागी जाएंगी, इनसे कहा जाएगा ये है जिसे तुमने अपने लिए खजाना बना रखा था, बस अपने खजानों का मजा चखो, यानी वो माल जिस पे जकात न दी या हराम तरीकों से कमाया। महीनों की गिनती अल्लाह के नजदीक किताबुल्लाह में 12 की है, इसी दिन से जब से आसमानों जमीन को इसने पैदा किया, इनमें से 4 हुरमत और अदब के हैं, यही दुरुस्त दीन है, तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो, और तुम तमाम मुशरिकों से जिहाद करो जैसे कि वो तुम सब से लड़ते हैं, और जान रखो कि अल्लाह ताला मुत्तकियों के साथ है। अल्लाह हमें मुत्तकी बना दे, तकवा अता कर दे। अरबों की एक बिदत का तस्करा है, महीनों का आगे पीछे कर देना कुफर की ज्यादती है, इससे वो लोग गुमराही में डाले जाते हैं जो काफिर हैं। 1 साल तो इसे हलाल कर लेते हैं और 1 साल इसी को हुरमत वाला बना लेते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हुरमत रखी है इसके शुमार में मुवाफकत कर लें, यानी कमी पूरी कर लें, फिर इसे हलाल बना लें जिसे अल्लाह ने हराम किया है। इन्हें इनके बुरे काम भले दिखाई देते हैं और काफिर कौम की अल्लाह ताला रहनुमाई नहीं फरमाता। तो जरा सा देखिएगा इस्लाम के खिलाफ जो दूसरों की कोशिशें हैं, युत्फियु नूर अल्लाह, अल्लाह के नूर को मुंह की फूकों से बुझाने का फितना है। कुफार की कोशिशें देखिए, दीन इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लफ्ज़ जिहाद को बदनाम करने के लिए नेगेटिव प्रोपेगंडे हो रहे हैं। करना क्या है, सबसे पहली बात देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मते मोहम्मदिया का मकसद हयात समझना है, फिर इसी तरह जान माल और जुबान तीनों किस्म के जिहाद करने हैं, दीन इस्लाम को तमाम अदियान पर गालिब करना है ये आपके एजेंडे में था, और हुब्बे दुनिया और माल इस रास्ते की रुकावट है, इस मोहब्बत को दिल से निकालना है। फिर एक पुकार लगती है, ये है वो जो के आप आयते तदब्बुर जो शुरू की थी उसमें पढ़ चुके, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मा लकुम इज़ा क़ीला लकुम उन्फिरू फ़ी सबीलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुम्हें क्या हो गया कि जब तुमसे कहा जाता है कि चलो अल्लाह के रास्ते में कूच करो तो तुम जमीन से लगे जाते हो? क्या तुम आखरत की बस दुनिया की जिंदगी पर रीझ गए हो? इसके जवाब आप खुद लिखेंगे। सुनो, दुनिया की जिंदगी तो आखरत के मुकाबले में कुछ यूं ही सी है। अल्लाह हमें इसका एहसास दिला दे। अगर तुमने कूच ना किया तो तुम्हें अल्लाह दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारे सिवा और लोगों को बदल लाएगा। तुम अल्लाह ताला को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ से असल में तबूक का खुतबा है जिस पे आगे जाके इंशाल्लाह मैं थोड़ी सी बात करूंगी। यहाँ देखिएगा, दुनिया बा मुकाबला आखरत, आयत 38-39। दुनिया क्या है? करीब है, हकीर है, आरजी है और कलील है और दारुल अमल है। इसकी नेमतें और मुसीबतें वक्ती हैं। इसके बरअक्स आखरत बाद में आने वाली, बेश कीमत, दायमी और बड़ी और दारुल जजा। वहां की नेमतें भी हमेशा की, और अगर खुदा ना खास्ता को जहन्नुम में चला गया तो मुसीबतें भी हमेशा की। अब अपने दिल से सोचे, इस मैप पे आपने कम से कम 3 से 5 मिनट गौर करने बाद में, दुनिया आखरत की खेती है और हमारा तर्ज अमल तय करता है कि हम किधर जा रहे हैं। आयत 39 की रोशनी में एक तकाबुल देखिएगा, वो दुनिया जो अल्लाह की रजा और कुर्ब से मिले, नेमत और जो उसकी दौलत है वो नेमत बन जाएगी, आखरत में कामयाबी का जरिया होगी। इसके बरक्स वो दुनिया जो अल्लाह से दूर कर दे वो फितना है उसके लिए। दुनिया अल्लाह की रहमत से दूरी है और नतीजा आखरत में नाकामी का है। वो कहते ना कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं अपने आप को कहती हूँ कि अब भी ना अगर संभले, इससे बढ़कर और कौन हमारे दिल दिमाग पर इन चीज़ों को नक्श करेगा। अल्लाह का ये कुरान कितना हसीन है जो आपको मुझे इन चीज़ों पर गौर व फिक्र की दावत देता है। तो देखिएगा, हुब्बे दुनिया और कराहियतुल मौत का फितना जब लोगों में आता है आयत 39 की रोशनी में, तो फिर अल्लाह के रास्ते के तकाजे कितने बोझल लगते हैं। ऐसे लगता है कि पैदा ही अल्लाह ने दुनिया में खाने पीने और बस पहनने उड़ने के लिए था। तो दुनिया की जिंदगी मताउल गुरूर है, दुनिया के धोखे से बचना अक्लमंदी और सही मनहज का तकाजा है। दुनिया की मोहब्बत फितनों का दरवाजा है और हर बुराई और गुनाह की जड़ है। कसरते गुनाह और आखरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को तरजीह देने वाले का ठिकाना जहन्नुम है। फिर हमसे मतलूब क्या है? हुब्बे दुनिया में इतेदाल रखें और दीनी और शरई फराइज की अदायगी करें और मौत से डरने की बजाय उसके बाद के लिए तैयार करें अपने आप को। लेकिन जब ये फितने आते हैं तो शैतान इसमें बहुत हाथ डालता है। देखिएगा, खास तौर पर ये फितना, इसकी वजूहात क्यों है? क्यों हमें मरने से डर लगता है और जीने की ख्वाहिश बड़ी है कि सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं? तो वजह एक है शैतान के बहकावे, नफसानी ख्वाहिशात और ऐश पसंदी, दुनिया के फानी ना होने का यकीन, यानी दुनिया फानी है हमें इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा, कभी सोचते ही नहीं इसके बारे में। फिर इसी तरह से जाहिलियत, गफलत, मौत को जिंदगी का खात्मा समझ लेना, इखलास और तकवा की कमी, अम्बिया के सीरत व किरदार से नावाकफियत, निफाक और कुरान और सुन्नत से दूरी। अल्लाह आपको मुझे बचा के रखे। एक और मैप देखिएगा, हुब्बे दुनिया और कराहियतुल मौत के फितने के असरात क्या आते हैं? पहली बात, एक इंसान हकूकुल्ला से, हकूकुल इबाद से और मकसद हयात से गफलत का शिकार हो जाता है। फिर मौत और आखरत से गफलत, लंबी लंबी आरजुएं और मंसूबे, ईमान, इखलास और तकवा की कमी आती है, रूहानी बीमारियां और गुनाहों का मैलान बढ़ता है, एतदाल से हटने की वजह से आजमाइश और फितनों का शिकार होता है इंसान, और फिर जिद्दोजहद और जिहाद और दीन को फैलाने में अपना हिस्सा नहीं डालते। आज मुसलमान मुंह बोलती तस्वीर है इस फितने की। अल्लाह ताला हमारी इसलाह फरमा दे। तिर्मिजी की रिवायत है अबू सईद अल खुदरी से, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बेशक दुनिया मीठी है, सरसब्ज है, बेशक अल्लाह ताला ने तुम्हें इसमें नायब बनाया है, बस वो देखना चाहता है कि तुम कैसे अमल करते हो। बस दुनिया से और औरतों के फितने से बचो। बेशक बनी इसराइल में जो फितना था वो औरतों ही के बारे में था। क्या पता चला, दुनिया जब दीन पर गालिब आ जाए और दीन में रुकावट बन जाए तो वो मलून बन जाती है। अल्लाह हमारी नस्लों को भी इन सारे फितनों से महफूज रखे। तो अब यहाँ लोगों को एक पैगाम दिया जा रहा है कि तुम नबी की मदद नहीं करते तो ना करो। इल्ला तंसुरूहु फकद नसरहुल्लाह। अगर तुम इनकी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद ना करो तो अल्लाह ही ने इनकी मदद की उस वक्त जब कि इन्हें काफिरों ने देश से निकाल दिया था, दो में से दूसरा जब कि वो दोनों गार में थे। देखिए, इस दीन को बचाने के लिए अल्लाह के नबी को गारों में भी पनाह लेनी पड़ी। हमारे तो घर ही इतने प्यारे हैं। आपका और अबू बकर सिद्दीक का गार का वाकया है ये। क्या हुआ उधर? दो में से दूसरा जबकि वो दोनों गार में थे, जब ये अपने साथी से कह रहे थे कि गम न कर के अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह हमें भी ये यकीन दिला दे। बस जनाबे बारी ताला ने अपनी तरफ से तस्कीन इस पर नाजिल फरमा कर इन लश्करों से इसकी मदद की जिन्हें तुमने देखा ही नहीं। उसने काफिरों की बात पस्त कर दी, और बुलंद व अजीज तो अल्लाह ताला का कलिमा है। अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह ताला आज हमें चुन ले इस कलमे को बुलंद करने के लिए। है ही बुलंद, हमारे जरिए भी करवा ले। करो क्या, आप देखिए क्या मोटिवेशनल अंदाज है, खून गर्म होता है। इन फिरू खिफाफ वसिकालन, निकल खड़े हो जाओ, हल्के फुल्के हो तो भी और भारी भरकम हो तो भी, यानी हालात अच्छे हैं तो भी, हालात बुरे हैं तो भी, किसी मौके पे तुमने पीछे नहीं रहना। बहुत सारे लोग इसी किस्म की बातें करते कराते अपने आप को पीछे ही रखते जाते हैं। हर हाल में निकलो, मजबूर हो के नहीं, माजूर हो के नहीं, जाना ही पड़ेगा। और आहिर रब में अपने माल और जान से जिहाद करो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम में इल्म हो। अगर जल्द वसूल हो जाने वाला माल और असबाब होता और हल्का सा सफर होता तो ये जरूर आपके पीछे हो लेते, लेकिन इन पर तो दूरी और दराज की मुश्किल पड़ गई। अब तो ये अल्लाह की कसमें खाएंगे कि हम में कुव्वत और ताकत होती तो हम यकीनन आपके साथ निकलते। ये अपनी जानों को खुद ही हलाकत में डाल रहे हैं। इनके झूठा होने का सच्चा इल्म अल्लाह को है। देखिए, अल्लाह से ज्यादा कोई बंदे को जानता है? तो 33 से 42 में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद गलबा दीन था। उलमा और सूफिया की अक्सरियत लोगों का माल नाहक खाती है, खास तौर पे बनी इसराइल के जो वाक़े देखे, और नसारा मारूफ है इसमें। इस्लाम में 12 महीने अल्लाह के तय करदा है। अल्लाह के हलाल करदा को हराम ठहराने का नतीजा बुरे अमाल है, और अल्लाह की राह में जी ना चुराओ। अल्लाह के नबी बहुत नरम मिजाज थे, जो आपसे जो बात कहता आप उसी बात को सच मानते और उसकी बात को कबूल करते। इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम आगे देखेंगे, वक्त पूरा हो चुका। अल्लाह ने जो हमारे नसीब में रखा हमने उसको लिया। अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। कल का पारा भी बहुत अहम है, अल्लाह ने चाहा तो हम उस तक पहुँचेंगे और देखेंगे कि किस तरह जब हम दीन से पहलू तही करते हैं तो उसकी सजा दुनिया में भी मिलती है जो आज हमें दिख रही है, और आखिरत में तो न जाने क्या होने वाला है अगर तौबा ना की। दर्द के साथ मजमूई तौर पे इज्तमाई तौबा करें, उम्मत के लिए दुआ करें। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी, सहाबा की ज़िंदगी जो आज हमने पढ़ी, उसमें और आज हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ मैच नहीं करती। इसीलिए तो बहुत सारी बातें समझ भी नहीं आई होंगी हमें कि जोड़ें ये क्या बातें हैं। तभी तो फिर हमें एक्सट्रीमिज़म लगता है दीन। तो अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु ताला खैरि खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन।